آگے سبق دیکھیے. وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَنْقُوزٌ بِأَمْثَالِ الزَّمَائِرِ الرَّاجِعَةِ إِلَىٰ أَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ مُفْرَدَةٍ أَوْ مُرَكَّبَةٍ فَإِنَّ الْوَزْعَ فِيهَا وَإِنْ كَانَ عَامًّا لَكِنَّ الْمَوْضُوعَ لَهُ خَاصٌ فَلَيْسَ هُنَاكَ مَفْهُومٌ كُلِّيٌ هُوَ الْمَوْضُوعُ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ. بھائی صاحب کافیہ نے کلمہ کی تعریف کی, الکلمتو لفظ وزع لمعنی مفرد. تو گزشتہ سبق میں اس کلمہ کی تعریف میں سے جو لمعنن کی قید آئی تھی اس کے بارے میں شارح جامی نے آپ کو بتلایا, اور آپ کو بتلایا کہ معنی کہتے ہیں ما یقصد بشیئن, وہ چیز جس کا ارادہ کیا جائے کسی دوسری چیز کے ذریعے, وہ چیز جس کا کسی چیز کے ذریعے ارادہ کیا جائے, یعنی مقصود بھی شے جو چیز ہو اس کو معنی کہتے ہیں, معنی کہتے ہیں. اور بتلایا تھا آپ کو کہ یہ جو معنی لفظ ہے یہ عنا یعنی عنایت سے ہے, یعنی یہ ناقص ہے, عنا یعنی عنایتن, اور عنا یعنی عنایتن کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا, جیسے قصد یقصد قصدن کا کیا معنی ہے, ارادہ کرنا. تو یہ عنا یعنی عنایتن سے ہے, اور یہ جو معنی یہ صیغہ ہے یا تو یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے یا یہ مصدر میمی ہے یا اس میں مفعول کا صیغہ ہے. تو یہ چاہے ظرف کا صیغہ ہو یا مصدر میمی ہو, دونوں صورتوں میں اس کا وزن مفعل ہے بھائی, کیونکہ آپ نے پڑھا ہے ظرف یفعل مفعل الا ناقص اے کمال, کہ یفعل کا ظرف کیا آتا ہے, مفعل آتا ہے سوائے کس کے, ناقص سے, یعنی ناقص سے مفعل نہیں آئے گا بلکہ مفعل آئے گا, اور عنا یعنی بھی ناقص ہے, تو لہذا اس سے بھی جو اس میں ظرف کا صیغہ آئے گا وہ کیا آئے گا, مفعل آئے گا. تو چاہیے اس کو مصدر میمی شمار کریں تب بھی اس کا وزن مفعل ہے, اور اگر ظرف کا صیغہ شمار کریں تب بھی اس کا وزن مفعل ہے بھائی, مفعل. تو اگر یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہو تو پھر یہ بمانے مقصد کے ہے, قصد یقصد کا معنی ارادہ کرنا, مقصد جائے قصد ارادے کی جگہ, یعنی وہ جگہ جس کا ارادہ کیا جائے. اسی طرح معنن کا بھی کیا معنی, وہ جگہ جس کا ارادہ کیا جائے. تو یہ اس میں ظرف ہے, مثلا لفظ کے ذریعے معنی کا ارادہ کیا جاتا ہے, لفظ کے ذریعے کس کا ارادہ کیا جاتا ہے, تو لفظ ایک چیز ہے اور معنی دوسری چیز ہے, اور لفظ کے ذریعے کس کا ارادہ کیا, معنی, تو اس معنی کو گویا محل مجازن کہہ دیا, اس کو مجازن کیا کہہ دیا کہ یہ محل ہے, یہ وہ جگہ ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے. مثلا میں نے زبان سے کہا زیدن اور آپ کے ذہن میں زید کی صورت آ گئی, تو لفظ زید نے کس پر دلالت کی, ذات زید پر, توجہ ہے, لفظ زید نے کس پر دلالت کی, ذات زید پر. تو زید ہوا دال اور ذات زید کیا ہوئی, مدلول. تو اس مدلول کو گویا مجازن محل کہہ دیا کہ یہ محل قصد ہے, یعنی اس کا ارادہ کیا گیا ہے. میں نے زید کے ذریعے کس کا ارادہ کیا, ذات زید, گویا یہ جو ذات زید ہے یہ محل قصد ہے میرا, اس جگہ کا میں نے ارادہ کیا ہے, اس چیز کا ارادہ کیا یعنی اس جگہ کا میں نے ارادہ کیا ہے, یہ میرا محل قصد ہے. تو گویا اس معنی کو مجازن کیا کہہ دیا, محل کہہ دیا مجازن. تو یہ محل قصد ہوا یعنی جس کا ہم نے ارادہ کیا ہے. اور جبکہ اگر یہ مصدر میمی ہو تو اس صورت میں بھی اس کا وزن مفعل ہے, اور پھر یہ بمانے اس میں مفعول کے ہے, یعنی معلوم ہوا مفعل بمانے معنی یون کے ہے, کیونکہ عنا یعنی عنایتن اس سے اس میں مفعول کا صیغہ کیا آتا ہے, معنی یون, جیسے رما یرمی سے مرمی یون آتا ہے. تو یہ مصدر ہے معنن, اور کس معنی میں ہے, مفعول یعنی معنی یون کے معنی میں ہے, یعنی وہ چیز جس کا ارادہ کیا جائے. مفعل مصدر ہو تو کیا معنی, ارادہ کرنا, ارادہ کرنا, لیکن یہ مصدر کس معنی میں ہے, معنی یون, وہ چیز جس کا ارادہ کیا گیا. تو دیکھو میں نے لفظ زید بولا اور ذات زید کا میں نے ارادہ کیا, تو وہ ہے معنی یون جس کا, ذات زید کیا ہے, معنی یون ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے. بس اردو شروحات کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ چاہے اس کو ظرف کا صیغہ بنائیں چاہے مصدر کا صیغہ بنائیں, دونوں صورتوں میں, دونوں صورتوں میں یہ بمعنی المفعول ہے. دیکھیے کتاب پر ذرا عبارت, فهو اما مفعل اسم مكان بمعنى المقصد او مصدر میمی بمعنى المفعول. توجہ ہے؟ تو بعد اردو شروحات والوں نے کیا کیا، بمعنى المفعول کو دونوں سے جوڑ دیا کہ یہ اس میں مکان یعنی ظرف کا صیغہ ہو تب بھی یہ بمعنی مفعول کے ہے، اور یہ مصدر میمی ہو تب بھی یہ بمعنی مفعول کے ہے، حالانکہ یہ نہیں درست نہیں بھائی، یہ بمعنى المفعول کا تعلق صرف مصدر سے ہے. جب مصدر ہو تو یہ کس معنی میں ہے؟ اس میں مفعول کے معنی میں ہے، جب ظرف ہو تو پھر یہ اس میں مفعول کے معنی میں نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ دونوں کا الگ الگ معنی بیان کر دیا شارح جامی نے. دیکھو بھائی، فہو اما مفعل اسم مکان بمعنى المقصد، یعنی یہ کس معنی میں ہے؟ مقصد کے معنی میں ہے. اور جب یہ مصدر میمی ہو تو بمعنى المفعول، پھر یہ کس معنی میں ہے؟ یہ مفعول کے معنی میں ہے. تو دیکھو دونوں کے لیے الگ الگ معنی باقاعدہ بیان کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ جب یہ مفعل اس میں ظرف کا صیغہ ہو تو پھر اس کو مفعول کے معنی میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس معنی ہی کو مجازن کیا کہہ دیا؟ محل کہہ دیا، محل قصد کہہ دیا. تقریر سمجھ میں آ گئی. اور تیسرا احتمال یہ تھا کہ یہ مخفف ہے معنی یون کا، یعنی یہ اصل میں ہے ہی اس میں مفعول کا صیغہ، پھر اس میں تخفیف کر دی گئی، معنیون کو معنن بنا لیا. کس طرح؟ کہ نون کے کسرہ کو کس سے بدل دیا؟ فتحہ سے، اور یا پر سے شد کو ختم کر دیا، تشدید ختم کر دی، تو کیا بن گیا؟ معنیون. پھر یا متحرک ما قبل فتحہ، اس کو کس سے بدلا؟ الف سے، تو الف بھی ہے اور آگے تنوین کا نون بھی ہے، تو کیا بن گیا؟ معنان. الف بھی ساکن، نون بھی ساکن، اجتماع ساکنین آیا، اور اگر اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آئے اور اول مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، تو کیا بن گیا؟ معنن بن گیا. تو تین احتمال ہیں، یا تو یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے بمانے مقصد کے، یا یہ مصدر میمی ہے بمانے اس میں مفعول کے، یا یہ خود ہی اس میں مفعول کا صیغہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح. اس کے بعد پھر اشکال ہوا تھا کہ بھئی پیچھے ذکر آیا تھا وضع کا اور آگے ذکر آیا لمعنن کا. وضع کہتے ہیں تخصیص شیئن بشیئن، ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کرنا. اور کس چیز کی وضع کی بات ہو رہی ہے؟ لفظ کی وضع کی. الکلمہ تو لفظ وضع، کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو، اور لفظ کو تو وضع کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ معنی کے لیے. توجہ ہے، لفظ کو وضع کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ معنی کے لیے. تو یہ الکلمت لفظ وضع، وضع کا ذکر آیا پیچھے، اور کس چیز کی وضع کی بات ہو رہی ہے؟ لفظ کی وضع کی بات ہو رہی ہے، اور لفظ کو کس کے لیے وضع کیا جاتا ہے؟ معنی کے لیے. تو معلوم ہوا تخصیص شے ان بشے ان کے اندر، جو ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کرنا ہے، اس میں شے ثانی سے معنی مراد ہے. کیا مراد ہے؟ کیونکہ لفظ کو کس کے لیے خاص کیا جاتا ہے؟ معنی کے لیے. تو جب معنی خود ملحوظ ہے وضع کے اندر، تو پھر اس کو الگ آگے لمعنن ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ معلوم ہوا لمعنن کا لفظ زائد ہے، بیکار ہے، کیونکہ وضع کے اندر ہی معنی ملحوظ ہے. تو اس کا جواب دیا تھا کہ بھائی یہاں جب لمعنن آگے خود ذکر ہے تو ہم وضع کو خالی کر لیں گے معنی سے. بھائی وضع کو کیا کر لیں گے؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں تجرید، ایک لفظ کو ایک معنی سے خالی کر لینا. تو وضع کو بھی معنی سے خالی کر لیا، اور وضع کا کیا معنی کر لیں؟ پہلے تھا تخصیص شیئن بشیئن، اس بشیئن ثانی کو ختم کر دو، تو گویا وضع ہوا تخصیص شیئن. وضع کا معنی صرف کیا رہ گیا؟ تخصیص شیئن، ایک شے کو خاص کرنا. بھئی کس چیز کے ساتھ خاص کرنا؟ آگے لمعنن آ گیا. کس کے ساتھ خاص کرنا؟ معنی کے ساتھ خاص کرنا. تو اب دیکھا جب تجرید ہوئی، اب معنی کا ذکر بیکار نہیں، کیونکہ اب وضع کے اندر معنی ملحوظ نہیں، اس کا معنی صرف کیا کر لو؟ تخصیص شیئن، اور بشیئن کی جگہ کیا لے آئے؟ بشیئن سے خالی کر دیا، اور اس کے جگہ پھر لمعنن لے آئے. اچھا، اس پر پھر اشکال ہوا کہ لمعنن علیحدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی جب وہ وضع کے اندر ملحوظ تھا، اسی سے کام چلا لیتے، بجائے اس کے کہ اس کو معنی سے خالی کیا اور پھر معنی کو علیحدہ لے کر آئے. یہ تو بات لمبی ہو گئی، حالانکہ متن تو مختصر ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جتنی قیدیں ہیں کلمہ کی تعریف میں، الکلمہ تو لفظوں وضع لمعنن مفردن، لفظ کس کے درجے میں؟ جنس کے درجے میں. وضع کس کے درجے میں؟ فصل. لمانن بھی فصل اور مفرد بھی فصل. تو ان میں سے ہر ایک فصل ہے. تو صاحب کافیہ جو ہے وہ بتلانا چاہتے تھے کہ لمانن کیا ہے؟ فصل ہے. اس کے ذریعے حروف تہجی کو خارج کرنا چاہتے تھے, کیونکہ حروف تہجی کو معنی کے لیے وضع نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو ترکیب کی غرض سے وضع کیا جاتا ہے. تو اگر یہ لمانن کو علیحدہ ذکر نہ کرتے تو لمانن کا فصل ہونا معلوم نہ ہوتا. اب لمانن باقاعدہ ذکر ہو گیا, اب پتہ چل گیا کہ یہ فصل ہے اور اس کے ذریعے کس کو نکالنا مقصود ہے؟ حروف تہجی کو نکالنا مقصود ہے. اور نیز دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس معنی کی صفت وہ مفرد لانا چاہتے تھے, تو اگر وضع کے اندر جو معنی تھا اسی کو برقرار رکھتے تو وہ تو معنی وضع کے اندر تھا, اس کی صفت تو مفرد نہیں لائی جا سکتی تھی. تو جب معنی کو علیحدہ ذکر کیا تو آگے اس کی صفت مفردین بھی لانا ممکن ہو گیا. تو دو فائدے ہو گئے اس سے بھائی, معنی کا فصل ہونا بھی سمجھ میں آ گیا اور اس کی صفت مفرد کا لانا بھی ممکن ہو گیا. تو جب وضع کی قید آئی, وضع کی قید آئی تو اس کے ذریعے محملات بھی نکل گئے. محمل لفظ اس کو تو کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہوتا. اور اسی طرح اس کے ذریعے وہ الفاظ جو دلالت بھی تباہ کرتے ہیں, طبیعت کے اعتبار سے دلالت کرتے ہیں, بمقتضائے طبیعت کے دلالت کرتے ہیں ایک چیز پر, وہ بھی خارج ہو گئے کیونکہ ان میں بھی وضع نہیں ہے. اور پھر میں نے یہاں پر آپ کو دلالت کی تفصیل بیان کی تھی کہ دلالت کہتے ہیں کہ ایک شے سے دوسری شے کا پتہ چل جائے. دھوئیں کو آپ نے دیکھا تو آپ کو آگ کا پتہ چل گیا, یہ کیا ہے؟ دلالت. دھوپ کو آپ نے دیکھا تو سورج کے طلوع ہونے کا آپ کو پتہ چل گیا, یہ کیا ہے؟ دلالت. کمرے کے اندر بیٹھے ہیں, باہر سے لوگوں کے بولنے کی آواز آئی, آپ کو پتہ چل گیا کہ باہر لوگ ہیں, یہ کیا ہے؟ دلالت. میں نے لفظ زید کہا, آپ کے ذہن میں کس کی صورت آ گئی؟ ذات زید. تو دیکھا لفظ زید سے کس کا پتہ چل گیا؟ ذات زید کا, یہ کیا ہے؟ دلالت. تو دلالت جس میں وہ چیز جس کے ذریعے پتا چلے اس کو کہتے ہیں دال, اور دوسری چیز جس کا پتا چلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدلول کہتے ہیں. تو دلالت کی تقسیم کرتے ہیں علماء دال کے اعتبار سے کہ دال کبھی لفظ ہوگا کبھی غیر لفظ. جیسے میں نے زید کہا, زبان سے زید کہا, زید ایک لفظ ہے اور آپ کے ذہن میں ذات زید آ گئی, اس کی صورت آ گئی. اور کبھی دال غیر لفظ ہوتا ہے, جیسے دور سے آپ نے دھواں دیکھا آپ کو آگ کا پتہ چل گیا, کسی نے زبان سے ایک لفظ نہیں کہا لیکن پھر بھی آپ کو آگ کا پتہ چل گیا. تو یہاں دال جو دھواں ہے وہ غیر لفظ ہے. تو دال کبھی لفظ ہوتا ہے اور کبھی غیر لفظ. پھر چاہے دلالت لفظیہ ہو چاہے دلالت غیر لفظیہ ہو, دونوں جو ہیں تین تین قسم پر ہیں, یا تو وہ دلالت وضعیہ ہوگی یا طبعیہ ہوگی یا عقلیہ ہوگی. دلالت وضعیہ وہ جس میں وضع کا دخل ہو, یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے خاص کیا گیا ہو, مقرر کیا گیا ہو, خود بخود دلالت نہ ہو. جیسے آپ نے سرخ اشارہ دیکھا اور گاڑی روک دی, دیکھو یہ سرخ اشارہ یہ کیا خود بخود گاڑی روکنے پر دلالت کرتا ہے یا اس کو باقاعدہ اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے؟ باقاعدہ اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے, مقرر کیا گیا ہے. خود بخود اس کو دیکھنے سے یہ کسی کو جس کو پتا نہیں ہوگا اس کو یہ علم نہیں ہو سکتا سرخ اشارہ دیکھ کر کہ اب گاڑی روکنی ہے بھائی. تو لہذا دلالت جو ہے اس میں اگر وضع کا دخل ہو, یعنی تقسیم مقرر کرنے کا اور متعین کرنے کا دخل ہو, تو اس کو دلالت وضعیہ کہتے ہیں. جیسے لفظ زید کو ذات زید کے لیے اس کے والدین نے مقرر کیا ہے, جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے والدین اس کا نام رکھتے ہیں, گویا اس نام کو اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں, تو یہ ہے وضع. تو جس دلالت میں وضع کا دخل ہو اس کو دلالت وضعیہ کہتے ہیں. اور ایک دلالت طبعیہ ہے, دلالت طبعیہ وہ ہے جس میں طبیعت کا دخل ہوتا ہے, وضع کا دخل نہیں بلکہ طبیعت دال کو وجود دیتی ہے اور اس سے دوسروں کو مدلول کا پتہ چلتا ہے. مثلا ایک شخص ہے, اس کو کسی بات پر شرمندہ ہونا پڑا, کوئی بات ایسی پیش آئی جس پر وہ شرمندہ ہو گیا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. تو دیکھو یہاں میں نے بتایا تھا دلالت طبعیہ کے اندر جو طبیعت ہوتی ہے پہلے اس کو مدلول پیش آتا ہے اور پھر وہ مدلول جو ہے اس کی وجہ سے طبیعت دال کو وجود دیتی ہے. تو یہاں پر بھی اس شخص کو پہلے شرمندگی پیش آئی, شرمندگی کا اسے سامنا کرنا پڑا اور اس شرمندگی کی وجہ سے اس کی طبیعت نے چہرے کو चेहरे को क्या कर दिया, सुर्ख कर दिया, और इस चेहरे की सुर्खी से दूसरों को भी पता चल गया कि इसको क्या पेश आई है, शर्मिंदगी पेश आई है। या जैसे किसी शख्स का जो है खौफ की वजह से रंग जर्द हो गया, तो देखो पहले उसको खौफ पेश आया और फिर इस खौफ की वजह से उसकी तबीयत ने चेहरे का रंग किस तरह कर दिया, जर्द रंग का कर दिया, और इससे दूसरों को भी पता चल गया कि इसको कि ये डर गया है, इसको कोई खौफ पेश आया है। तो लिहाजा ये जो दलालत तबईया है इसमें ये जो दाल है इसको तबीयत वजूद देती है। तो पहले तबीयत को मदलूल पेश आता है लेकिन किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं इसको क्या पेश आया, एक शख्स को मदलूल पेश आया, फिर तबीयत ने किसको वजूद दिया, दाल को, और फिर दूसरों को भी मदलूल का पता चल जाता है। तो दलालत में अगर वजह का दखल हो तो उसे दलालत वज़ईया कहते हैं, अगर तबीयत का दखल हो तो उसको दलालत तबईया कहते हैं, और इसके अलावा बाकी जितनी दलालतें हैं उनको दलालत अकलिया कहते हैं। वहां अकल दलालत करती है, वहां अकल दलालत करती है, एक चीज से दूसरी चीज का पता चलता है। जैसे धुएं को देखा तो आपको आग का पता चला, तो क्या इसमें वजह का दखल है, क्या हमने मुकर्रर किया है धुएं को आग के लिए, नहीं, आग जब जलेगी धुआं पैदा होगा, तो लिहाजा इसमें ना वजह का दखल न इसमें तबीयत का दखल है, तो इसको क्या कहेंगे, दलालत अकलिया। और यहां देखो दाल लफ्ज नहीं है, और कभी दाल क्या होगा, लफ्ज होगा और दलालत अकलिया होगी। जैसे देखो कमरे के बाहर लोगों की बातें करने की आवाज आई, आपको एक भी लफ्ज समझ में नहीं आया, लेकिन आवाजों से क्या पता चल गया कि बाहर कौन है, लोग हैं। तो यह दलालत लफ्जिया अकलिया है भाई। तो दलालत में अगर वजह का दखल हो तो उसे दलालत वजईया कहते हैं, अगर तबीयत का दखल हो तो उसे दलालत तबईया कहते हैं, और अगर इन दोनों का दखल ना हो तो उसे दलालत अकलिया कहते हैं। और मैंने आपको यह भी बतलाया था कि दलालत अकलिया एक दलालत का नाम है, इसका यह माना नहीं कि दलालत वजईया और तबईया में अकल का दखल नहीं होता, अकल का दखल तो तीनों के अंदर है। अकल होगी तो दलालत वजईया समझ में आएगी, दलालत तबईया समझ में आएगी। तो अकल का दखल तो तीनों में है, लेकिन वहां चूंकि वजा या तबीयत का भी दखल था इसलिए उनका नाम वजा वजईया या तब, यानी अकल के साथ साथ वजा का भी दखल हो तो उसको वजईया कहते हैं, अकल के साथ साथ तबीयत का भी दखल हो तो उसको तबईया कहते हैं, और अगर वजा या तबीयत का दखल ना हो दलालत में तो उसको दलालत अकलिया कहते हैं। तो बात चल रही थी अलकलिमतु लफ्जों वुज़िअ, बतलाया कि वजा की कैद के जरिए मोहमलात भी निकल गए, क्योंकि मोहमल उसको तो किसी माना के लिए वजा नहीं किया जाता, नीज इसके जरिए वो अल्फाज भी निकल गए जो तबीयत की वजह से दलालत करते हैं किसी चीज पर, वो अल्फाज भी निकल गए। मसलन एक शख्स को खांसी है तो वो सीने में तकलीफ होती है तो वो उह उह करता है। अब देखो यह लफ्ज है और यह लफ्ज किस पर दलालत कर रहा है, सीने की तकलीफ पर। तो पहले उस शख्स को क्या पेश आई, सीने में तकलीफ हुई और मदरूल पेश आया, और इस मदरूल ने फिर किसको वजूद दिया, उह उह को वजूद दिया, और इससे दूसरों को भी पता चल गया कि इसको क्या है, खांसी है, सीने में तकलीफ है। तो यहां पर जो दलालत हुई उसमें वजह का दखल नहीं, क्या हमने उह उह को इसके लिए मुकर्रर किया है, नहीं, इसमें वजा का दखल नहीं। हां यह दलालत तबईया है, यह जो उह उह है इसको किसने वजूद दिया, तबीयत ने वजूद दिया, और किस वजह से कि इसको सीने में तकलीफ पेश आई थी। तो पहले सीने में तकलीफ पेश आई, फिर उसने उह उह को वजूद दिया, और इससे दूसरों को भी पता चल गया कि इसको सीने में तकलीफ है। तो वजा से यह भी निकल गए, ये उह उह सीने की तकलीफ पर दलालत तो कर रहा है लेकिन यहां पर वजा नहीं, तो वह अल्फाज जो दलालत करते हैं तबीयत के एतबार से, यानी उसमें वजा का दखल नहीं होता, वो भी वजा की कैद से निकल गए भाई। हां अलबत्ता हुरूफ हिजा अभी भी बाकी थे, हुरूफ तहज्जी जिनको तरकीब की गरज से वजा किया जाता है कि इनको जोड़कर मुख्तलिफ अल्फाज लिखे जाएंगे, मुख्तलिफ अल्फाज लिखे जाते हैं, वो अभी भी बाकी थे। लेकिन आगे जब लिमानन की कैद आई, अलकलिमतु लफ्जों वुज़िआ लिमानन, जिनको माना के लिए वजा किया गया हो तो हुरूफ तहज्जी भी निकल गए क्योंकि उनको किसी माना के लिए वजा नहीं किया गया। अलिफ बा ता सा जीम हा खा, कोई माना समझ में आ रहा है आपको, नहीं कोई माना समझ में नहीं आ रहा, इनमें वजा तो है लेकिन माना के लिए वजा नहीं है बल्कि तरकीब के लिए वजह है। तो ये लिमानन की कैद के जरिए हुरूफ तहज्जी निकल गए भाई। उसके बाद फिर यहां पर इश्काल हुआ था। इश्काल ये कि आपने क्या कहा, अल कलिमा तो लफ्जों वजिया लिमानन, कलिमा वो लफ्ज है जिसको किसके लिए वजा किया जाए, माना के लिए वजा किया जाए। भाई बाज औकात लफ्ज को लफ्ज के लिए वजा किया जाता है, वो तो निकल गए, वो तो कलिमा की तारीफ से निकल गए। कलिमा की तारीफ तो आपने क्या की, अल कलिमा तो लफ्जों वजिया लिमानन, कलिमा वो लफ्ज है जिसको वजा किया गया हो माना के लिए। लेकिन कभी कभी तो लफ्ज को लफ्ज के लिए वजा कर लेते हैं, जैसे इसम है, इसम किसे कहते हैं, किताब को, कलम को, रजुल को, फरस को, जैद को, अमर, बकर, ये सब क्या हैं, इसम हैं। तो देखो इसम का लफ्ज इन लफ्जों के लिए वजा है। इसी तरह जराबा, नसारा, यंसुरु, यफ्तहु, यखरुजु, ये सब क्या हैं, फेल हैं। तो फेल का लफ्ज इन लफ्जों के लिए वजा है। इसी तरह मीन, इला, फी वगैरह, इनको क्या कहते हैं, इनको हरूफ कहते हैं। तो हर्फ वजा है इन लफ्जों के लिए वजा है। तो बाज औकात लफ्ज को लफ्ज के लिए वजा किया जाता है, तो वो तो अलकलिमा की तारीफ से निकल गए, खारिज हो गए, क्योंकि अलकलिमा की तारीफ तो आपने क्या की कि लफ्ज को किसके लिए वजा किया गया हो, माना के लिए वजा किया गया हो। हालांकि इनको माना के लिए वजा नहीं किया गया, बल्कि लफ्ज के लिए वजा किया गया है। इश्काल समझ में आया। तो उसका जवाब इन्होंने जिक्र किया था कि हमने माना की क्या तारीफ की, मायुक्सदो विषय, माना वो है जिसका इरादा किया जाए किसी चीज के जरिए, माना वो है जिसका इरादा किया जाए किसी चीज के जरिए, तो वो आम है, जिसके साथ भी इरादे का ताल्लुक हो जाए उसको माना कहेंगे, चाहे वो लफ्ज हो चाहे गैर लफ्ज, यानी माना हो मफहूम हो, चाहे वो लफ्ज हो चाहे मफहूम हो, उसको क्या कहेंगे, भाई जिस चीज का भी इरादा किया जाए, जिसका भी, तो इसम बोलकर किताब का इरादा किया, इसम बोलकर किसका इरादा किया, कलम का इरादा किया, इसम बोलकर रजुल का इरादा किया, तो देखा तो इरादा आ गया या नहीं, तो इसमें इरादा आ गया, तो यह माना हुआ, क्योंकि माना भी किसे कहते हैं, जिसका इरादा किया जाए। तो मालूम हुआ माना आम है, वो लफ्ज को भी शामिल है और गैर लफ्ज को भी शामिल, यानी मफहूम को भी शामिल है। आसान लफ्जों में यूं कहो कि तुलबा उमूमन यह समझते हैं कि माना, माना और लफ्ज दोनों एक दूसरे के मुकाबिल हैं, जो लफ्ज है वो माना नहीं और जो माना है वो लफ्ज नहीं। लेकिन इन्होंने आपको बतला दिया कि नहीं भाई, माना आम है, माना के अंदर ही लफ्ज भी दाखिल है और गैर लफ्ज भी दाखिल है। तो लिहाजा जवाब हो गया, आपने क्या कहा था, अल कलिमा तो लफ्ज मानन, कलिमा वो लफ्ज है जिसको माना के लिए वजा किया गया हो। तो आपने कहा बाज अल्फाज को तो लफ्जों के जरिए वजा, लफ्जों के लिए वजा किया जाता है, तो वो भी इसके अंदर दाखिल हो गए। भाई जवाब समझ में आ गया। इस पर फिर दूसरा इश्काल हुआ। दूसरा इश्काल ये कि एक जगह तो आपने जवाब देकर जान छुड़ा ली, अब कैसे जवाब देंगे। आपने क्या कहा, माना आम है, लफ्ज भी हो सकता है और गैर लफ्ज भी हो सकता है, लेकिन कभी कभार एक लफ्ज को मुरक्कब लफ्जों के लिए वजा कर लिया जाता है। जैसे जुमला, जुमला किसे कहेंगे, मसलन जैदुन कायमुन, ये क्या है, जुमला। बकरुन आलिमुन, ये क्या है, जुमला। तो जुमला का लफ्ज जैदुन कायमुन के लिए वजा है मसलन, तो लफ्ज लफ्ज के लिए वजा है, लफ्ज जुमला ये भी क्या है, लफ्ज, और जैदुन कायमुन वो भी क्या है, लफ्ज। तो लफ्ज किसके लिए वजा है, लफ्ज के लिए, लेकिन वो लफ्ज क्या है, जिनके लिए वजा है, मुरक्कब है, जुमला है, क्या है, मुरक्कब है और जुमला है। और आपने कलिमा की तारीफ क्या की, अल कलिमा तो लफ्जों वुजिया लिमानम मुफरदिन, लिमानम कलिमा वो लफ्ज है जिसको मुफरद माना के लिए वजा किया जाए, और माना आम था, लफ्ज को भी शामिल है और गैर लफ्ज को भी। तो अगर तो यहां जुमला लफ्ज है, इसको किसके लिए, किसके लिए वजा किया, जैदुन कायमुन के लिए, वो भी लफ्ज है, लेकिन वो मुफरद है या मुरक्कब है। जैदुन कायमुन का क्या माना, जैद खड़ा है, तो देखो जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत कर रहा है, लफ्ज क्या, जैदुन कायमुन, और माना क्या, जैद खड़ा है, जैद ने अपने मफहूम पर दलालत की और कायमुन ने अपने मफहूम पर दलालत की। भाई तर्जमे में दोनों आ रहे हैं, तो जैदुन कायमुन मुफरद है या मुरक्कब है, मुरक्कब है, क्योंकि जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत कर रहा है। तो मालूम हुआ जैदुन कायमुन मुरक्कब है और इसके लिए जुमला या खबर का लफ्ज वजा किया गया है। तो खबर का लफ्ज लफ्ज के लिए वजा, लेकिन किस लफ्ज के लिए, मुफरत के लिए या मुरक्कब के लिए? मुरक्कब के लिए वजा किया गया है, तो लिहाजा आपकी तारीफ इस पर सादिक नहीं, क्योंकि आपने तो तारीफ क्या की, अलकलिमतु लफ्जुन वज़िअली मानाम मुफ्रदिन, कलिमा ऐसा लफ्ज है जिसको वजा किया गया हो मुफरद माना के लिए, और माना आम है, लफ्ज भी मुराद हो सकता है गैर लफ्ज भी, तो माना का तर्जमा भी गोया यहां लफ्ज के कर लो, कलिमा वो लफ्ज है जिसको मुफरद लफ्ज के लिए वजा किया गया हो, माना लफ्ज भी शामिल है और गैर लफ्ज भी, हम जरा लफ्ज कर लेते हैं इसका तर्जमा बात को समझाने के लिए, कलिमा वो लफ्ज है जिसको किसके लिए वजा किया गया हो मुफरद लफ्ज के लिए, हालांकि जुमला का लफ्ज किसके लिए वजा है, जैद उन कायम उनके लिए, और वो मुफरद लफ्ज है या वो मुरक्कब है, मुरक्कब है, तो ये तारीफ से खारिज हुआ, जुमला को भी कलिमा नहीं कहना चाहिए, खबर को भी कलिमा नहीं कहना चाहिए। इश्काल समझ में आया, तो उसका जवाब इन्होंने दिया कि भाई यहां पर जैद उन कायम उनकी दो हैसियतें हैं, मैंने आपको कॉपी में लिखवाया था कि सबसे ऊपर क्या लिखें, खबर लिख लें या जुमला लिख लें, और इसका माना क्या है, नीचे लिखें जैद उन कायम उन, और जैद उन कायम उन के नीचे उसका तर्जमा लिखा कि जैद खड़ा है। अब देखो ये जो जैद उन कायम इन है इसकी दो हैसियतें हैं, ऊपर इसके क्या है, जुमला, जैद उन कायम उन का क्या नाम, जुमला, और इसका माना क्या, जैद खड़ा है, तो जैद उन कायम उन को अगर इसके माना की तरफ देखा जाए तो ये मुरक्कब है, क्योंकि जुजे लफ्ज क्या कर रहा है, जुजे माना पर दलालत कर रहा है, और जैद उन कायम उन जो है इसको अपने से ऊपर यानी जुमला और खबर जो इसका नाम है, जो लफ्ज इसके लिए वजा किया गया है उसकी तरफ नजर करें तो फिर यह मुफरद है, क्योंकि यहां जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत, तवज्जो है, याद रखो, एक है मुफरद लफ्ज एक है मुफरद माना। मुफरद लफ्ज किसे कहेंगे कि जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत ना करें, जुजे लफ्ज, जैसे जुमला, जुमला का क्या माना, मसलन जैदुन कायमुन, जो भी जुमला ले आए आप यहां पर तो जुमला का क्या माना, जैदुन कायमुन, तो मुझे बताइए जुमला का जीम जैदुन कायमुन के किसी एक हिस्से पर दलालत कर रहा है, मीम और लाम वो किसी एक हिस्से पर दलालत कर रहे हैं, तो मालूम है जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत नहीं कर रहा, तो जुमला को मुफरद कहेंगे, यह लफ्ज क्या है, मुफरद है, मुरक्कब नहीं, तवज्जो है, और मुरक्कब उसे कहते हैं कि जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत करे, जैसे जैद उन कायमुन और इसका तर्जमा क्या है, जैद खड़ा है, तो यहां देखो जैद का लफ्ज जैद पर दलालत कर रहा है और कायमुन का लफ्ज कायमुन पर, तो जुजे लफ्ज क्या कर रहा है, जुजे माना पर दलालत कर रहा है, तो जैद उन कायमुन बाई लिहाज यह मुरक्कब है कि इसका माना कि जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत कर रहा है। तो मैं बात कर रहा था मुफरद और मुरक्कब की। मुफरद लफ्ज किसे कहते हैं, वो लफ्ज कि जिसके जुज माना के जुज पर दलालत न करें, और एक है मुफरद माना। मुफरद माना किसे कहते हैं, तवज्जो से सुनो, मुफरद माना उसे कहते हैं कि जिसके लिए जो लफ्ज वजा किया गया है, जैसे जैदुन कामुन के लिए क्या लफ्ज वजा किया गया है, जुमलतुन या खबरुन, ये क्या है, जुमला है या खबर, तो मुफरद माना किसे कहते हैं कि इसके लिए जो लफ्ज वजा किया गया है उस लफ्ज का जुस इसके जुस पर दलालत न करे। तो जैदुन कायमुन के लिए क्या लफ्ज वजा है, जुमला, और जुमला इसके जुस पर दलालत कर रहा है एक एक जुस पर, जीम मीम और लाम, तो ये इसको कहेंगे कि ये मुफरद है ये माना। तवज्जो है नहीं, तवज्जो मेरा ख्याल। मुफरद लफ्ज किसे कहते हैं कि जिस लफ्ज का, मैं बात लफ्ज की कर रहा हूं, जिस लफ्ज का जुज उसके माना के जुज पर दलालत न करे उसे क्या कहते हैं, मुफरद। जुमला किसके लिए वजा किया गया है, मसलन जैदुन कायमुन के लिए, तो जुमला का जीम मीम लाम क्या जैदुन कायमुन के एक किसी एक एक जुज पर अलग अलग दलालत कर रहा है, लिहाजा इस जुमला को क्या कहेंगे, ये लफ्ज क्या है, मुफरद है। और अगर जुजे लफ जुजे माना पर दलालत करे तो उसको मुरक्कब कहेंगे, जैदुन कायमुन यह एक जुमला है और इसका माना क्या है, इसका माना क्या है, जैद खड़ा है, तो जुजे लफ्ज क्या कर रहा है, जुजे माना पर, तो कहें हम कहेंगे ये जो जैदुन कायमुन का लफ्ज है ये लफ्ज मुरक्कब है, तो जुमलतुन खुद क्या है, मुफरद, और जैदुन कायमुन क्या है, मुरक्कब। और एक होता है माना मुफरद और मुरक्कब। माना किसे कहते हैं, माना अगर मुफरद हो, माना मुफरद किसे कहेंगे कि इस माना के लिए जो लफ्ज वजा किया गया है इससे ऊपर उसका उस लफ्ज के जुज इस माना के जुज पर दलालत न करें। जैदुन कायमुन के लिए क्या वजह है, जुमला, जैदुन कायमुन के लिए क्या वजह है, जुमला, और ठीक है जैदुन कायमुन के अंदर तो अज्जा हैं, लेकिन क्या ये जो माना है इसके लिए जो लफ्ज जुमला वजा है क्या उसका जीम मीम लाम इसके किसी जूस पर दलालत कर रहे हैं? नहीं। तो लिहाजा हम कहेंगे जुमला का माना है जैदुन कायमुन, और जैदुन कायमुन मुफरद माना है। ये क्या है? क्यों मुफरद माना है? मुफरद माना किसे कहते हैं कि जिसके लिए जो लफ्ज वजा किया गया है वो लफ्ज इसके एक एक जूस पर अलग अलग दलालत न करे। बात समझ में आई? और मुरक्कब माना किसे कहेंगे कि उसके लिए जो लफ्ज वजा किया गया है वो इस माना के एक एक जुज पर दलालत करे। जैसे जैद खड़ा है, इसके लिए क्या लफ्ज वजा किया है? जैदुन कायमुन। इसके लिए क्या लफ्ज वजा किया है? जैदुन कायमुन। और ये जैदुन कायमुन ये इस माना के एक एक जुज पर दलालत कर रहा है या नहीं कर रहा? दलालत कर रहा है। तो जैद खड़ा है, इसको क्या कहेंगे? यह मुरक्कब माना है, क्योंकि इसके लिए जो लफ्ज जैदुन कायमुन वजा है वह जुजे लफ्ज क्या कर रहा है? इसके जुज पर दलालत कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा अब बात चल रही थी, इश्काल यह था कि आपकी तारीफ से जुमला और खबर जिनको अल्फाज मुरक्कबा के लिए वजा किया गया है वो निकल गए। मैंने बताया मसलन कापी में क्या लिखवाया, ऊपर है जुमला और खबर, दरमियान में क्या है? जैदुन कायमुन, और सबसे नीचे उसका तर्जमा क्या है? जैद खड़ा है। तो हम कहते हैं जैदुन कायमुन में दो हालतें हैं। एक हालत इसके ऊपर की तरफ देखें, जैदुन कायमुन के लिए क्या लफ्ज वजा है? जुमलातुन। तो इस एतबार से यह मुफरद है, इस एतबार से, क्योंकि जुमला का एक एक जूस इस माना के एक एक जूस पर दलालत नहीं कर रहा। और एक जैदुन कायमुन का माना है कि जैद खड़ा है, तो उसके एतबार से यह जैदुन कायमुन क्या है? मुरक्कब है, क्योंकि जुजे लफ्ज क्या कर रहा है? जुजे माना पर दलालत कर रहा है। तो गोया जैदुन कायमुन की दो हालतें हैं, यह अपने माना की तरफ देखा जाए तो मुरक्कब है, और यह अपने लिए वजा किए हुए लफ्ज यानी जुमला और खबर के एतबार से इसको देखा जाए तो यह मुफरद है। तो यहां पर इसको मुफरद ही कहेंगे भाई, क्योंकि जुमला और खबर की तरफ नजर करते हुए जैदुन कायमुन क्या है? मुफरद है। तवज्जो है? तो हमारी तारीफ क्या थी? अल कलिमतु लफ्ज़ुन वज़िअ लिमाना मुफ़रदिन, कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जिसको वज़ा किया गया हो माना मुफ़रद के लिए। तो यह ज़ैदुन क़ायमुन ये जो माना है किसका माना है? जुमले का या खबर का, ये मुफ़रद है, क्योंकि जुज़े लफ्ज़ जुज़े माना पर दलालत, जुमला का जीम मीम लाम या इसी तरह खबर की खा बा रा जुज़े माना पर दलालत नहीं कर रहे। तो बई लिहाज ज़ैदुन क़ायमुन मुफ़रद माना है, मुफरद माना है, इसको मुरक्कब नहीं कहेंगे। तो मालूम हुआ जैदुन कायमुन में दो एतबार हैं, एक एतबार से यह मुफरद है, एक एतबार से मुरक्कब है। जैदुन कायमुन को इसके तर्जमे के एतबार से देखें तो यह मुरक्कब है, और जैदुन कायमुन को अगर इसके लिए वजा किए हुए लफ्ज जुमला और खबर के एतबार से देखें तो यह क्या है? मुफरद है। मालूम हुआ एक ही चीज दो मुख्तलिफ हैसियतों से मुफरद और मुरक्कब हो सकती है, एक एतबार से मुफरद हो दूसरे एतबार से मुरक्कब हो। जवाब समझ में आ गया? उसके बाद फिर दोनों का एक इकट्ठा जवाब भी दिया था पहले, और पहले दो जवाब थे तस्लीमी और दूसरा जवाब है मनई। तस्लीमी जवाब जिसमें एतराज को तस्लीम कर लिया जाता है कि हां बात ऐसी ही है लेकिन इसका यह जवाब है, और मनई जवाब जिसमें एतराज ही को रद्द कर दिया जाता है कि हमें आपका एतराज ही तस्लीम नहीं है, आपका एतराज दुरुस्त नहीं है, और फिर जवाब जिक्र किया जाता है। तो पहले तस्लीमी जवाब थे, इन्होंने पहला एतराज क्या किया कि आपने तो कहा लफ्ज को वजा किया जाता है माना के लिए, लेकिन कभी कभी लफ्ज को लफ्ज के लिए भी वजा कर लिया जाता है, वो तो निकल गए। तो इन्होंने तस्लीम किया कि हां आपका एतराज हम तस्लीम करते हैं, लफ्ज को लफ्ज के लिए भी वजा कर लिया जाता है, कभी लफ्ज को लफ्ज के लिए भी वजा किया कर लिया जाता है, लेकिन माना आम है, वह लफ्ज को भी शामिल है और गैर लफ्ज को भी शामिल है। फिर दूसरा एतराज हुआ था कि आपकी तारीफ से जुमला और खबर जैसे अल्फाज निकल गए, क्योंकि इनको वजा किया गया है जैदुन कायमुन वगैरह के लिए यानी जुमले के लिए, यानी मुरक्कब माना के लिए वजा किया गया है, हालांकि आपने तो तारीफ में क्या कैद लगाई कि मुफरद माना होना चाहिए। तो उसका भी जवाब दे दिया कि यहां पर जैदुन कायमुन जुमला और खबर की तरफ नजर करते हुए मुफरद माना है, मुरक्कब नहीं है। अब अगला जवाब मनई देने लगे हैं, दोनों का इकट्ठा जवाब, मनई यह कि हमें आपका एतराज ही तस्लीम नहीं है। आपके दोनों एतराजों की बुनियाद इस बात पर थी कि कभी लफ्ज को लफ्ज के लिए वजह कर लिया जाता है, फिर वो कभी मुफरद होता है कभी मुरक्कब होता है, आपका एतराज यह था। हम कहते हैं नहीं, लफ्ज को लफ्ज के लिए वजह ही नहीं किया जाता, लफ्ज को वजह ही माना के लिए किया जाता है, यानी एक मफहूम कुल्ली के लिए। किसके लिए? मफहूम कुल्ली के लिए वजह किया जाता है, और अल्फाज जो होते हैं वह उसके अफराद होते हैं। जैसे इसम, इसम को जैद अमर बकर किताब कलम रजुल फरस इनके लिए नहीं वजह किया गया, बल्कि इसम कहते हैं वो कलिमा जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करे और तीन जमानों में से कोई जमाना भी उसके साथ मिला हुआ ना हो। तो इस मफहूम कुल्ली के लिए इसम को वजह किया गया है। और हां आगे जैद अमर बकर किताब कलम रजुल फरस ये इसके अफराद हैं भाई, ये क्या हैं? इसके अफराद हैं। जैसे इंसान को वजह किया गया है हैवान नातिक के लिए, लेकिन जैद अमर बकर वगैरह इसके अफराद हैं भाई। तो इंसान को वजह किया मफहूम कुल्ली के लिए, और जो खारिज में लोग हैं ये क्या हैं? इसके अफराद। तो हम कहते हैं लफ्ज को लफ्ज के लिए वजह नहीं किया जाता, बल्कि लफ्ज को एक मफहूम कुल्ली के लिए वजह किया जाता है, और बाकी जो अल्फाज होते हैं वो इसके अफराद होते हैं। इसी तरह फेल जो है उसको नसरा जाराबा युक्रिमु यफ्तहु वगैरह के लिए वजह नहीं किया गया, बल्कि इसको एक मफहूम कुल्ली के लिए वजह किया गया है। फेल किसे कहते हैं? वो कलिमा जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करे और उसके साथ तीन जमानों में से कोई एक जमाना भी मिला हुआ हो। तो यह है फेल का मफहूम, इसके लिए फेल को वजह किया गया है, और बाकी नसरा जाराबा फतहा वगैरह वो इसके अफराद हैं, वो इसका मफहूम नहीं है। इसी तरह हर्फ जो है उसको वजह किया गया है उस कलिमे के लिए जो अपना माना खुद बखुद अदा न करे, एक मफहूम कुल्ली है। और हां मीन फी और इला वगैरह इसके अफराद हैं भाई। इसी तरह जुमला जो है, जुमला उसको वजह किया गया है ऐसे दो कलिमे जिनको जोड़ा जाए और उनके दरमियान क्या हो? इसनाद हो, उसको जुमला कहते हैं। तो यह एक मफहूम कुल्ली है, और जैदुन कायमुन क्या है? इसके अफराद में से है। इसी तरह खबर भी कहते हैं वो जुमला जो सिदक और किजब दोनों का इहतमाल रखे, तो यह एक मफहूम कुल्ली है, इसके लिए खबर को वजह किया गया है। और जैदुन कायमुन या इसी तरह बकरुन आलिमुन वो इसके अफराद में से है। मालूम हुआ लफ्ज को लफ्ज के लिए वजह नहीं किया जाता, बल्कि लफ्ज को माना के लिए वजह किया जाता है, यानी एक मफहूम कुल्ली के लिए, और अल्फाज क्या होते हैं? उसके अफराद होते हैं। अब आगे देखिए भाई, कहते हैं वला यख्फा अलैका अन्न हादल हुक्म मनकूज़ुन बि अम्साल ज़माइर राजिअति इला अल्फाज़िन मख़सूसतिन मुफ़रदतिन औ मुरक्कबतिन فإن الوزع فيها وإن كان عاما لكن الموضوع له خاص فليس هناك مفهوم كلي هو الموضوع له في الحقيقة। صاحب جامی اب یہ جو جواب دیا, یہ جو اکٹھا جواب دیا دونوں اعتراضوں کا کہ لفظ کو لفظ کے لیے وضع نہیں کیا جاتا بلکہ کس کے لیے کیا جاتا ہے وضع؟ مفہوم کلی کے لیے, یعنی موضوع له अल्फाज नहीं होते बल्कि मौजूल हो मफहूम कुल्ली होता है, मफहूम कुल्ली। उस पर आप एक इश्काल जिक्र करेंगे, और इश्काल जिक्र करके उसका जवाब जिक्र किए बगैर आगे चले जाएंगे। साहिब जामी का इश्काल समझने से पहले वजा की किस्मों को अच्छी तरह समझ लें भाई। जी अब तवज्जो से सुनना भाई, मुश्किल बहस है भाई। याद रखो वजा जो है, वजा की किस्में पहले अच्छी तरह समझ लीजिए, फिर आपको ये इश्काल और एतराज समझ में आएगा। याद रखो वजा की चार किस्में हैं। एक सूरत यह कि वजा भी आम हो और मौजू लहू भी आम हो, वजा भी आम हो और मौजू लहू भी आम हो। दूसरी सूरत वजा भी खास हो और मौजू लहू भी खास हो। तीसरी सूरत वजा आम हो और मौजू लहू खास हो। चौथी सूरत वजा खास हो और मौजू लहू आम हो। तवज्जो है, एक है वजा एक है मौजू लहू, या दोनों आम होंगे या दोनों खास होंगे, या अव्वल आम होगा सानी खास होगा, या अव्वल खास होगा और सानी आम होगा। कितनी सूरतें बन गई? चार सूरतें। सबसे पहले वजा भी आम हो और मौजू लहू भी आम हो। इसको कहते हैं कि एक चीज का तसव्वुर किया जाए उसके माने आम के साथ। तवज्जो है, एक चीज का तसव्वुर किया जाए माने आम के साथ, और फिर इस माने आम को उस चीज के लिए मौजूलहू बना दिया जाए। क्या मैंने कहा? एक चीज का तसव्वुर किया जाए माने आम के साथ और फिर इस माने आम को उस चीज के लिए मौजूलहू बना दिया जाए। फिर दोहराएं, बल्कि ये लिख लें, ये एक दो लफ्ज लिख लें, ये बाद में आपको मुश्किल पेश आएगी तकरार में। भाई नंबर एक, वजा भी आम हो और मौजू लहू भी आम हो, बस एक आध लिख लें, बाकी फिर आप खुद ही इससे बाकी तफसील को फिर बस समझ लें तो वो काफी है। वजा भी आम हो, मौजू लहू भी आम हो, यानी किसी शय का तसव्वुर किया जाए, यानी किसी शय का तसव्वुर किया जाए माने आम के साथ, माने आम के साथ, और फिर इसी माने आम को, और फिर इसी माने आम को उस चीज के लिए मौजू लहू भी बना दिया जाए, उस चीज के लिए, और फिर इसी माने आम को उस चीज के लिए मौजू लहू भी बना दिया जाए। जैसे इंसान का तसव्वुर किया जाए, जैसे इंसान का तसव्वुर किया जाए हैवान नातिक के साथ, हैवान नातिक के साथ, और फिर इसी माने आम, और फिर इसी माने आम यानी हैवान नातिक को, यानी हैवान नातिक को इंसान के लिए, इंसान के लिए मौजू लहू बना दिया गया, मौजू लहू बना दिया गया। बस भाई बाकी तफसील एक एक आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी का समझना आपके लिए आसान है। इधर देखिए भाई, वजा की चार किस्में हैं भाई। वजा भी आम हो और मौजू लहू भी आम हो। दूसरी किस्म, वजा भी खास हो, मौजू लहू भी खास हो। तीसरी किस्म, वजा आम हो और मौजू लहू खास हो। चौथी सूरत के वजा खास हो और मौजू लहू आम हो। सबसे पहली किस्म मैं बयान कर रहा था जो मैंने आपको लिखवा दी, वजा भी आम हो मौजू लहू भी आम हो। इसे कहते हैं कि एक चीज का आप तसव्वुर करते हैं माने आम के साथ, किसके साथ? एक माने आम के साथ उसका तसव्वुर करते हैं, यानी एक मफहूम कुल्ली के साथ उसका क्या करते हैं? तसव्वुर करते हैं। फिर उसी माने आम यानी उसी मफहूम कुल्ली को उसके लिए मौजू लहू बना देते हैं। फिर उसी मफहूम कुल्ली यानी उसी माने आम को उस चीज के लिए क्या बना देते हैं? मौजू लहू बना देते हैं। मसलन आप इंसान का तसव्वुर करते हैं एक माने आम के साथ, एक मफहूम कुल्ली के साथ, कि इंसान किसे कहते हैं? हैवान नातिक को। तो आपने इंसान का तसव्वुर किया एक माने आम के साथ कि यह क्या है? हैवान नातिक मफहूम कुल्ली है। जैद भी हैवान नातिक, बकर भी हैवान नातिक, खालिद भी हैवान नातिक वगैरह। तो आपने इंसान का तस्वूर किया एक माने आम के साथ यानी एक मफहूम कुल्ली के साथ जो कसीरीन पर सादिक आता है, और फिर इसी मफहूम आम को मौजू लहू बना दिया उस चीज के लिए। इसी हैवान नातिक को मौजू लहू बनाया किसके लिए? इंसान के लिए। यानी इंसान का लफ्ज इसको किसके लिए वजह किया गया है? हैवान नातिक के लिए। इंसान का मौजू लहू क्या है? हैवान नातिक। तवज्जो है, इंसान को किसके लिए वजह किया गया है? हैवान नातिक। ये इसका मौजू लहू है। मौजू लहू वो माना जिसके लिए लफ्ज को क्या किया जाए? वजह किया जाए, मुकरर किया जाए। लफ्ज जैद को किसके लिए वजह किया गया है? जात जैद के लिए। गिलास का लफ्ज किसके लिए वजह किया गया है? पानी पीने के एक बर्तन के लिए वजह किया गया है। बारिश का लफ्ज किसके लिए वजह किया गया है? आसमान से बादलों से जो पानी बरसता है उसके लिए बारिश का लफ्ज वजह किया गया है। बात समझ में आ रही है? तो मौजू लहू कहते हैं वो माना जिसके लिए किसी लफ्ज को क्या किया जाए? वजा किया जाए। तो माना भी आम हो और मौजू लहू भी आम हो, इसका क्या माना है? मैंने क्या बतलाया? कि एक चीज का आप तसव्वुर करते हैं किस एतबार से, उसके माना आम के एतबार से, मफहूम कुल्ली के एतबार से तसव्वुर करते हैं। आपने इंसान का तसव्वुर किया किस माना के एतबार से, कि यह क्या है, हैवान नातिक है। फिर इसी हैवान नातिक को मौजू लहू बना दिया इंसान के लिए, कि इंसान का लफ्ज इस हैवान नातिक के लिए वजा है। इंसान का लफ्ज तवज्जो है, फिर दोहराएं, वजा भी आम हो मौजू लहू भी आम हो, किसे कहते हैं कि एक चीज का तसव्वुर किया जाए किसके साथ, माना आम यानी मफहूम कुल्ली के साथ, और फिर इसी मफहूम कुल्ली को उसके लिए मौजू लहू करार दे दिया जाए। तवज्जो है, जैसे इंसान का तसव्वुर किया किस माना के एतबार से, हैवान नातिक के एतबार से, जो एक माम माना है, जो मफहूम कुल्ली है, उसके एतबार से उसका तसव्वुर किया, और फिर इसी को उसके लिए क्या बना दिया, मौजू लहू बना दिया, कि इंसान इस माना के लिए वजा है। यह इसका मौजू लहू है, इंसान का मौजू लहू क्या, हैवान नातिक। और हैवान नातिक माना आम है या माना खास है, कसीरीन पर सादिक आता है या किसी एक पर सादिक आता है, कसीरीन पर सादिक आता है, तो यह माना आम है यानी मफहूम कुल्ली है। दूसरी सूरत यह है कि वजह भी खास हो और मौजू लहू भी खास। वजह खास वही लफ्ज जो मैंने आपको लिखवाए थे उसी से समझ लें, कि एक चीज का तसव्वुर किया जाए खास माना के साथ, जो सिर्फ उसी पर सादिक आते हैं, और उसी को उसके लिए क्या बना दिया जाए, मौजू लहू भी बना दिया जाए। मसलन जैद है, वालिदैन ने क्या किया, अपने बच्चे का नाम जैद रखा, तवज्जो है, जैद रखा। अब जैद उसका नाम है किस एतबार से, यानी जैद का तसव्वुर किया, वो जो बेटा है उसका तसव्वुर किया कि ये हैवान नातिक है, और इसकी ये तशखुसात हैं। तशखुस कहते हैं पहचान वाली चीजें, तशखुसात किसे कहते हैं, पहचान वाली चीजें। मसलन देखो, जैद के खास रंग की, खास तरह की आंखें होंगी, खास चेहरा होगा, खास उसके कान होंगे, खास तरह उसके बाल होंगे, खास तरह उसके हाथ पांव वगैरह होंगे। ये जो आप एक दूसरे साथियों को पहचानते हैं, किस तरह पहचानते हैं, इन्हीं तशखुसात के जरिए तो पहचानते हैं, वरन तो सबकी दो आंखें हैं, एक मुंह है, दो कान है, एक सर है, दो हाथ हैं, दो पांव हैं, लेकिन हर एक के तशखुसात होते हैं, हर एक की आंखें अलग, हर एक का चेहरा अलग, हर एक के कान अलग, हर एक के बाल अलग, हर एक के कदो कामत वगैरह अलग, इनको क्या कहते हैं, तशखुसात। क्या कहते हैं, तो तशखुसात कहते हैं, यानी जिसके जरिए एक चीज की पहचान होती है। तो मां बाप ने अपने बेटे का नाम जैद रखा, क्या सिर्फ हैवान नातिक होने के एतबार से, कि यह भी इंसान है, इसका क्या नाम है, जैद, या उसके उसके सारे मुशखसात उसके अंदर मुराद होते हैं, सारे मुशखसात। देखा, किसी और का बेटा लाकर दिखाएंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं ये तो जैद नहीं है, जैद तो ये है। तो मालूम हुआ, जब किसी का नाम जैद रखा गया है तो उसमें उसका हैवान नातिक होना भी मलहूज है, कि ये इंसान है, ये हमारा बच्चा है, इंसान की औलाद है, और साथ उसके मुशखसात या तशखसात भी क्या होते हैं, मलहूज होते हैं। तो यहां पर वो उस बच्चे का तसव्वुर किया किस एतबार से, कि यह हैवान नातिक है और साथ उसके तशखुसात, इनका भी तसव्वुर किया। और यह माना आम है या खास है, यह खास है, उसी बच्चे पर सादिक आ रहा है, किसी और पर नहीं। तो एक चीज का तसव्वुर किया हैवान नातिक के साथ, उसके तशखुसात के साथ, और फिर इसी को उसके लिए मौजू लहू बना दिया, इसी हैवान नातिक मात तशखुसात, इसको क्या बना दिया, उसके लिए मौजू लहू। के जैद का लफ्ज इस ये वाला जो हैवान नातिक है, जिसके ये तशखुसात हैं, उसका जैद नाम है, हर एक का नाम जैद नहीं। तो देखो, वजह भी खास कि जैद का तसव्वुर किया सिर्फ उसके हैवान नातिक के एतबार से या उसके तशखुसात के एतबार से, तो ये देखो माने खास का तसव्वुर किया, और उसी माने खास को उसके लिए क्या करार दे दिया, मौजू लहू भी करार दे दिया। पिछली मिसाल में क्या था, एक शय का तसव्वुर किया था माने आम के एतबार से, इंसान का तसव्वुर किया एक माने आम यानी हैवान नातिक, और वो तो मफहूम कुल्ली है, वो तो सब पर सादिक आता है जितने भी इंसान है। तो एक चीज का तसव्वुर किया था मफहूम कुल्ली के एतबार से, और फिर उसी मफहूम कुल्ली को क्या बना दिया, उसके लिए मौजू लहू बना दिया। जबकि यहां पर एक चीज का तसव्वुर किया है माने खास के साथ, और फिर उसी माने खास को उसके लिए मौजू लहू करार दे दिया। तो जैद का तसव्वुर किया यानी उस जात का, कि यह हैवान नातिक भी है और इसके तशखुसात हैं, और फिर इसी माना को इसके लिए क्या करार दे दिया, मौजू लहू। तो जैद का लफ्ज इस इंसान के लिए वजह है, जिसकी ये पहचान है, ये तशखुसात हैं, हर एक पर यह बोला नहीं जाएगा, सादिक नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। तीसरी सूरत यह है کہ وضع عام ہو اور موضوع لہو خاص ہو. وضع کیا ہو؟ عام ہو اور موضوع لہو خاص ہو. موضوع لہو خاص ہو جیسے ایک شے کا تصور کیا معنی عام کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تو توجہ سے سمجھ لو. وضع عام اور موضوع لہو خاص. ایک شے کا تصور کیا معنی عام کے ساتھ اور پھر اس معنی عام کو اس کے لیے موضوع نہیں بنایا بلکہ اس معنی عام کو آلہ بنایا, مرآت بنایا. مرآت کہتے ہیں آئینے کو جس میں آپ اپنی صورت دیکھتے ہیں. تو پھر اس معنی عام کو آلہ بنایا اور مرآت بنایا اس کے افراد کو ملاحظہ کرنے کے لیے, افراد کو دیکھنے کے لیے, اور پھر ان افراد میں سے ہر ایک کو موضوع لہو بنا دیا. ان کو کیا بنا دیا؟ ان افراد کو موضوع لہو بنایا. اس معنی عام کو موضوع لہو نہیں بنایا, اس معنی عام کو آلہ اور مرآت بنایا افراد کو ملاحظہ کرنے کے لیے. توجہ ہے؟ بس توجہ سے بیٹھیں, انشاءاللہ بہترین بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. بس توجہ اس طرف رکھیں. دیکھو معنی عام ہو اور موضوع لہو خاص. ایک چیز کا تصور کیا کس اعتبار سے؟ معنی عام, مفہوم کلی کے اعتبار سے. لیکن پھر اس مفہوم کلی کو اس کے لیے موضوع لہو نہیں بنایا بلکہ اس مفہوم کلی کو آلہ بنایا, مرآت یعنی شیشہ بنایا. کس کو دیکھنے کے لیے؟ اس کے افراد کو دیکھنے کے لیے, اور پھر ان افراد کو موضوع لہو بنا دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی وہ جو معنی عام تھا اس کو شیشہ بنا دیا. بھائی شیشہ اور آئینہ, اس کے سامنے جو چیز آتی ہے وہ اس میں نظر آتی ہے. زید سامنے آئے گا وہ بھی نظر آئے گا, بکر بھی نظر آئے گا, کتاب بھی نظر آئے گی, فرس بھی نظر آئے گا, قلم بھی نظر آئے گا. لیکن یہاں جو مرآت ہے خاص مرآت ہے, خاص آئینہ ہے وہ. اور وہ کون سا آئینہ ہے؟ وہ مفہوم کلی. کیا ہے وہ مفہوم کلی؟ اس آئینے میں ہر چیز نہیں نظر آئے گی, اس میں صرف وہ چیز نظر آئے گی جو اس مفہوم کلی پہ پوری اترتی ہے, اور چیزیں اس میں نظر نہیں آئیں گی. مثلا دیکھو, ہوا ضمیر ہے. ضمیر اسم اسماء اشارہ اسماء موصولہ سب اسی طرح ہے. ان میں کیا ہے؟ وضع عام ہے اور موضوع لہو خاص. ہوا کو مثلا وضع کیا گیا ہے ہر ایسی چیز کے لیے. توجہ سے سنو, ہوا کو وضع کیا گیا ہے ہر ایسی چیز کے لیے جو مفرد ہو, مذکر ہو, اور جس کا ماقبل میں ذکر ہو چکا ہو, یعنی مرجع پہلے گزر چکا ہو. ہوا کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ ہر ایسی چیز کے لیے جس کے لیے, ہر ایسی چیز کے لیے جو مفرد ہو, تثنیہ یا جمع نہ ہو, نیز مذکر ہو, مؤنث نہ ہو, اور نیز اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو. تو ہوا کسے کہتے ہیں؟ مفرد مذکر چیز جس کا پہلے ذکر ہو. تو اب مثلا دیکھو, یہ معنی مثلا زید پہ صادق آیا. کس پر؟ زید پر صادق آیا. تو ہم کہیں گے یہ ہوا کا موضوع لہو ہے. پہلے کس کا تصور کیا؟ ایک معنی عام کا. معنی عام کیا تھا؟ مفرد ہو, مذکر ہو, اور ماقبل میں ذکر ہو چکا ہو. اور پھر اسی معنی عام کو موضوع لہو نہیں بنایا بلکہ موضوع لہو مثلا زید پہ یہ صادق آ رہا تھا تو زید کو موضوع لہو بنایا. عمر پر یہ معنی صادق آ رہا ہے کہ وہ مفرد ہے, مذکر ہے, اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے, تو اس کو کیا بنا دیا؟ نہیں توجہ بھائی, میں کلام کر رہا ہوں. کلام کے اندر زید کی بات آئی. ایک دفعہ تو میں زید کا نام لوں گا, دوسری دفعہ میں کہوں گا ہوا اخی, وہ میرا بھائی ہے, یا ہوا صدیقی, وہ میرا دوست ہے. تو یہ جو ہوا میں لے کر آیا کس کے لیے لے کر آیا؟ زید کے لیے. زید مفرد بھی ہے, مذکر بھی ہے, اور ماقبل میں اس کا ذکر بھی ہو چکا ہے. توجہ ہے؟ تو دیکھو یہاں پر میں نے زید کا تصور کیا بائی لحاظ کہ یہ کیا ہے؟ مفرد ہے, مذکر ہے, اور اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. تو ایک معنی عام کے اعتبار سے میں نے زید کا تصور کیا, اور پھر اس معنی عام کو موضوع لہو نہیں بنایا ہوا کے لیے. ہوا ضمیر میں نے کس کو لوٹائی؟ زید کی طرف لوٹائی. لیکن اس ہوا کے لیے میں نے اس معنی عام کو موضوع لہو نہیں بنایا, اس زید کو موضوع لہو بنا دیا. کہ زید کیا ہے؟ اس مفہوم پر پورا اترتا ہے. وہ مفرد بھی ہے, وہ مذکر بھی ہے, اس کا ماقبل میں ذکر بھی ہو چکا. تو ہوا کو میں نے اس مفہوم کلی کے لیے وضع نہیں کیا بلکہ اس زید کے لیے وضع کیا ہے. یہ یوں کہیں کہ وضع تو ہے عام, وضع تو ہے عام. کس کا تصور کیا؟ माना आम का कि मुफरत भी हो मुजक्कर भी हो और माकबल में जिक्र हो चुका हो, लेकिन मौजू लहू किसको बनाया, जैद को बना दिया, उसके लिए यह हुआ लफ्ज मैंने वजा कर दिया। मसलन जैद का पीछे जिक्र आया था, आगे मैंने कहा हुआ सदीकी, वो मेरा दोस्त है, तो ये हुआ को मैंने जैद के लिए वजा कर दिया। किसके लिए? इस हुआ से कौन मुराद है? जैद मुराद है। बात कुछ समझ में आ रही है? फिर सुनो, फिर सुनो। तीसरी किस्म है वजा की कि वजा आम हो और मौजू लहू खास हो। इसको कहते हैं कि एक शय का तसव्वुर किया जाए माने आम के एतबार से। जैद का मैंने तसव्वुर किया, जैद की तरफ मैं हुआ जमीर लौटाना चाहता हूं, तवज्जो है, तो मैंने जैद का तसव्वुर किया एक माने आम के एतबार से कि यह मुफरद है मुजक्कर है और माकबल में इसका जिक्र हो चुका है। जैद में ये तीनों चीजें जब पाई गई तो अब मैंने इसके लिए हुआ को वजा कर दिया और मैंने कहा जा अनी जैदुन हुआ सदीकी, ये हुआ जमीर किसको राजे? जैद को। और मुझे बताइए ये हुआ जमीर हर एक को राजे होती है या मुफरत भी होना चाहिए मुजक्कर भी होना चाहिए और माकबल में जिक्र भी होना चाहिए? मुफरत भी हो मुजक्कर भी हो माकबल में जिक्र भी हो, ये सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। और जैद में भी ये सारी चीजें पूरी हैं या नहीं? लफ्ज जैद जो पीछे जिक्र हुआ, लफ्ज जैद जो, तो अब यह हुआ को जो मैंने वजा किया है यह इस लफ्ज जैद के लिए वजा किया है। किसके लिए? लफ्ज जैद के लिए वजा किया है। तो यहां पर वजा तो है आम, जैद का मैंने तसव्वुर किया किस एतबार से? मफहूम कुल्ली के एतबार से। वह मफहूम कुल्ली क्या था? कि यह मुफरद है मुजक्कर है और माकबल में जिक्र इसका हो चुका। मुझे बताइए मुफरद हो मुजक्कर और माकबल में जिक्र हो चुका हो, यह सिर्फ जैद है या अमर बकर खालिद वगैरह कोई भी हो सकता है? यह तो कोई भी हो सकता है, यह तो एक मफहूम कुल्ली है। तवज्जो है, तो एक मफहूम कुल्ली का पहले तसव्वुर, एक चीज का तसव्वुर किया जाता है मफहूम कुल्ली के साथ और फिर उस मफहूम कुल्ली को मौजू लहू नहीं बनाते, उसके लिए हुआ जमीर या हाजा इसमें इशारा को वजा नहीं करते, बल्कि जो उसके अफराद हैं उनके लिए हुआ या हाजा को वजा करते हैं। तो मैंने हुआ को वजा किया किसके लिए? जैद के लिए। उस मफहूम कुल्ली जो, कौन सा मफहूम कुल्ली? मुफरद मुजक्कर और माकबल में जिक्र हो चुका, उसके लिए वजा नहीं किया। तवज्जो है, तो मैंने जैद का तसव्वुर किया किस माना के एतबार से? एक मफहूम कुल्ली के एतबार से, और फिर उस पर जैद पूरा उतर रहा था तो मैंने उसके लिए हुआ का लफ्ज वजा कर दिया और उसके लिए हुआ जमीर इस्तेमाल कर ली। अमर का इसी तरह, अमर का लफ्ज पहले गुजरा था तो अमर को भी मैंने उस मफहूम कुल्ली के आईने में देखा, उस शीशे में देखा, तो अमर भी उस शीशे में नजर आ रहा था, उसमें भी वो शर्तें पूरी थी तो मैंने अमर के लिए हुआ जमीर वजा कर दी। फिर बकर का जिक्र आ गया आया तो बकर में भी वो सारी शर्तें पूरी थीं, मुफरद भी था मुजक्कर भी था और माकबल में उसका जिक्र भी हो चुका था, तो मैंने हुआ जमीर को किसके लिए वजा कर दिया? बकर के लिए। तो देखो वजा तो है आम, वजा तो है आम, लेकिन मौजू लहू क्या है? खास है। मौजू लहू खास है। फिर समझो, फर्क समझो, वजा आम हो और मौजू लहू भी आम, और वजा आम हो और मौजू लहू खास। वजा आम में एक चीज का तसव्वुर करते हैं मफहूम कुल्ली के एतबार से और फिर उसी मफहूम कुल्ली को उसके लिए क्या बना देते हैं? मौजू लहू। तवज्जो है, उसी के लिए क्या बना देते हैं? मौजू लहू बना देते हैं। और अगर वजा आम हो मौजू लहू खास हो तो उसमें एक चीज का तसव्वुर करते हैं माने आम और मफहूम कुल्ली के एतबार से, लेकिन मौजू लहू उस मफहूम कुल्ली को नहीं बनाते बल्कि उसके अफराद को बनाते हैं एक एक को भाई, यानी उस मफहूम कुल्ली को वास्ता बनाते हैं, आईना बनाते हैं। मफहूम कुल्ली को वास्ता और आईना बनाते हैं। मसलन देखो, हुआ जमीर है, मसलन अब जैद का जिक्र आया, मैंने जैद का तसव्वुर किया किस तरह कि ये क्या है? मुफरद है भाई। अगर अज़ैदान ही होता तो मैं हुआ कह सकता था? नहीं, इसलिए क्योंकि ये जो आईना है, आईना किस चीज का है? कौन सा आईना किस चीज का है? वो मफहूम कुल्ली का आईना है। वो मफहूम कुल्ली को मैंने आला और आईना बना दिया और उस आईने में हर चीज की सूरत नजर आती है या जो उसकी शर्तों पे पूरा उतरेगा वही नजर आएगा? जो उसकी शर्तों पर पूरा उतरेगा सिर्फ वो नजर आएगा। लिहाजा मैंने एक आईना बनाया, ये आईना क्या है? मुफरद हो मुजक्कर हो और और माकबल में इसका जिक्र हो चुका हो, चुनाचे मेरे कलाम में अमर का लफ्ज आया। अब अमर को मैंने इस आईने में देखा, क्या मेरी इन शर्तों पर यह पूरा है? क्या यह मुफरद है? पहली शर्त भी पूरी, दूसरी क्या मुजक्कर भी है और मकबल में इसका जिक्र भी हो चुका, तो ये इस आईने में मुझे नजर आया कि हां अमर इस आईने में नजर आ रहा है, मालूम है इसमें शर्तें पूरी हैं, तो इस अमर के लिए मैंने कौन सी जमीर वजा कर दी? हुआ जमीर वजा कर दी। बात समझ में आ गई? तो उस माने आम के लिए हुआ को नहीं वजा किया, बल्कि उस माने आम को आईना सिर्फ बनाया है, वजा मैंने उसके अफराद के लिए की है, जैद के लिए की है। फिर जब अमर आएगा तो उसके लिए मैं वजा कर दूंगा, जब बकर आएगा तो मैं उसके लिए वजा कर दूंगा, जब किताब की तरफ जमीर लौटानी है तो किताब के लिए मैं जमीर वजा कर लूंगा, तो जो जो लफ्ज आएगा उसके लिए मैं इस जमीर को वजा करता जाऊंगा। बात समझ में आ गई अच्छी तरह? तो यह तो वह सूरत थी कि वजा आम हो और मौजू लहू खास हो, इसमें वो जो आम माना है उसको मौजू लहू नहीं बनाया जाता, बल्कि उस आम माना को आईना और आला बनाया जाता है और मौजू लहू उसके अफराद को बनाया जाता है, जो भी मौका पर हो, जो भी जिसके लिए भी आप बनाना चाहते हैं, अगर वो उस आईने में नजर आ रहा है, उसकी शराइत पर पूरा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं उसके लिए उस जमीर को या इसमें इशारा को वजा कर सकते हैं। दूसरी मिसाल ले लो, मसलन मैं हाजा के साथ, हाजा के जरिए इशारा करना चाहता हूं किसकी तरफ? जैद की तरफ। किसकी तरफ? जैद की तरफ, कि हाजा जैदुन, हाजा जैदुन। याद रखो जैसे जमीर है, जैसे जमीर के अंदर वजा आम होती है और मौजूला हो खास, इसी तरह इसमें इशारा भी है, इसी तरह अस्माए मौसूला भी हैं। अब मसलन इसमें इशारा की मिसाल ले लो, इसमें इशारा की मिसाल ले लो, तो इसमें इशारा मसलन मैं जैद की तरफ इशारा करना चाहता हूं, जैद की तरफ इशारा करना चाहता हूं, इसमें इशारा हाजा किसके लिए वजा है? जो मुफरद हो, मुजक्कर हो और मुबसर हो, आंखों से दिखाई दे रहा हो, इसमें इशारा किसे कहते, किसके लिए वजा है? ऐसी चीज जो मुफरद हो, तस्निया जमा ना हो, और मुजक्कर हो, मुअन्नस ना हो, मुअन्नस के लिए तो हाजी ही कहेंगे, और नीज वो आंखों से दिखाई दे, मुबसर हो, महसूस हो, तवज्जो है। तो मैं अब जैद के लिए हाजा इसमें इशारा लाना चाहता हूं, तो पहले मैंने जैद का तसव्वुर किया, यूं कहें उस माने आम का तसव्वुर किया उस आईने का, और वो आईना क्या है, कितनी शर्तें हैं उसमें, मुफरद हो, मुजक्कर हो और मुबसर हो, आंखों से दिखाई दे। तो मैंने इस आईने में जैद को देखा, तो इस आईने की शराइ जैद में पाई जा रही हैं, लिहाजा जैद इस आईने में नजर आ रहा है, तो अब मैंने उसके लिए हाजा का इसमें इशारा वजा कर दिया, और मैंने क्या कहा, हाजा, मसला जैद का लफ्ज पीछे आया था, मैंने कहा हाजा लफ्जुन मुफरदुन, ये क्या है, लफ्ज मुफरद, हाजा के जरिए इशारा है किसकी तरफ, जैद की तरफ, तो यहां हाजा, हाजा इसके लिए मफहूम कुल्ली जो है उसको मैंने मिरात और आईना बनाया, और इस हाजा को किसके लिए वजा किया, जैद के लिए, तो वजा तो है आम, लेकिन वो जो माने आम है उसको मैंने मौजू लहू नहीं बनाया, मौजू लहू मैंने किसको बनाया, जैद, गोया वजा आम है लेकिन मौजू लहू खास। फिर यही चीज मैं अब मैं हाजा इस्तेमाल करना चाहता हूं अमर के लिए, तो वो भी इस आईने में नजर आ रहा है, मालूम हुआ उसमें भी सारी शर्तें हैं, तो उसके लिए भी मैं कहूंगा, अमर का पीछे लफ्ज आया, मैं कहता हूं हाजा मुफरदुन, ये लफ्ज क्या है, मुफरद है, या हाजा अलमुन, ये क्या है, अलम है, हाजा के लिए मैं उसकी तरफ इशारा कर दे करता हूं, तो अस्मा इशारा में भी क्या है, वजा आम होती है और मौजू लहू खास होता है, यानी हर हर जुजी के लिए अलहदा वजा है, जैद के लिए की तरफ हाजा के लिए इशारा कर रहा हूं तो जैद के लिए हाजा अलग वजा है, बकर की तरफ हाजा के लिए इशारा कर रहा हूं तो बकर के लिए हाजा अलग वजा है, खालिद की तरफ मैं हाजा के लिए इशारा कर रहा हूं तो खालिद के लिए हाजा अलग वजा है, इसी तरह हुआ भी था जैद के लिए इस्तेमाल करूंगा तो हुआ जैद के लिए अलग वजा है, बकर की तरफ इशारा करूंगा तो हुआ बकर के लिए अलग वजा है, खालिद के लिए मैं इशारा करूंगा तो खालिद के लिए हुआ अलग वजा है, तो वजा आम है लेकिन मौजू लहू खास है, हर एक के लिए अलग अलग वजा है, हर हर फर्द के लिए अलग वजा है, आप जिसके लिए भी हुआ इस्तेमाल करें गोया आपने हुआ को उसके लिए वजा कर दिया, आप जिसकी तरफ भी हाजा के जरिए इशारा करें गोया आपने उसके लिए हाजा को वजा कर दिया, तो वजा तो है आम लेकिन मौजू लहू खास है, मौजू लहू उस माने आम को नहीं बनाया, उस माने आम को सिर्फ वासिता बनाया है अफराद को मुलाहिजा करने के लिए, उनको देखने के लिए। तो ये तीसरी किस्म थी। पहली किस्म क्या थी? वजा भी आम हो, मौजू लहू भी आम। दूसरी किस्म थी वजा भी खास हो, मौजू लहू भी खास। तीसरी किस्म थी वजा आम हो और मौजू लहू खास। चौथी किस्म है वजा खास हो और मौजू लहू आम हो। यह सिर्फ एक अकली एहतमाल है, यह वाकई में नहीं पाया जाता। ऐसी वजा नहीं है कि वजा क्या हो, खास, और मौजू लहू क्या हो, आम। तो यह सिर्फ एक अकली एहतमाल है, यह समझाने के लिए मैंने जिक्र कर दिया। बात समझ में आ गई। अब आइए, अब आपको साहिब जामी का एतराज समझ में आएगा। साहिब जामी कहते हैं, एतराज यह करते हैं कि आपने दोनों इश्कालों का एक जवाब दिया था, लेकिन वो जवाब जमीरों के जरिए टूट जाता है। आपने क्या जवाब दिया था कि इसम, फेल, हर्फ, खबर, जुमला, इनको लफ्जों के लिए वजा नहीं किया गया। तीसरा जो जवाब था, मुश्तरका जवाब दोनों का, इनको लफ्जों के लिए नहीं वजा किया गया बल्कि मफहूम कुल्ली के लिए वजा किया गया है। कहते हैं जमीरों, अस्मा इशारा, अस्मा मौसूला में आपकी यह बात नहीं चल सकती, क्योंकि क्योंकि ये जो जमीरें हैं इनको इनको मफहूम कुल्ली के लिए वजा नहीं किया गया। यहां हर हर फर्द के लिए अलहदा वजा है। हुआ को जैद के लिए अलहदा वजा किया गया, हुआ को बकर के लिए अलहदा वजा किया गया, यानी जिसके लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे हम यूं कहेंगे आपने इसको इस लफ्ज के लिए वजा किया है। तो पहले आपने जवाब क्या दिया कि इसम, फेल, हर्फ वगैरह वो अल्फाज के लिए नहीं वजा बल्कि किसके लिए वजा है, मफहूम कुल्ली के लिए वजा है। लेकिन यह जमीरे और अस्मा इशारा वगैरह यहां तो मफहूम कुल्ली के लिए वजा नहीं है बल्कि यह तो हर हर फर्द के लिए एक एक लफ्ज के लिए अलहदा वजा है। जैद का लफ्ज पीछे इबारत में जिक्र आया तो उसके लिए मैंने अलग कहा हुआ जय हुआ इस। मसलन देखो भाई, मसलन आप कहें भाई जैदुन, जी जैदुन, देखा आपने कहा जैदुन, मैंने फौरन कहा हुआ मुफरदुन या हुआ इस्मुन या मैं कहता हूं हुआ अलमुन। अब यह हुआ के जरिए किसकी तरफ इशारा है? जैद की तरफ। और जैद क्या था? लफ्ज, लफ्ज था। तो इस हुआ का मौजू लहू क्या? वही लफ्ज जैद है। वजा तो आम है लेकिन मौजू लहू इसका क्या है? खास है। इस वक्त लफ्ज जैद इसका मौजू लहू है। तवज्जो है, इसका मौजू लहू क्या है? लफ्ज जैद। हुआ मुफरदुन, ये हुआ से मैं इसका इरादा कर रहा हूं। आपने अभी जुबान से क्या कहा? जैदुन। मैंने कहा हुआ मुफरदुन, यह लफ्ज क्या है? ये जो आपने जुबान से लफ्ज कहा ये क्या है? मुफरद। तो हुआ से इशारा है किसकी तरफ? जैद की तरफ। तो ये हुआ वजा है किसके लिए? जैद के लिए, लफ्ज जैद के लिए। तो लफ्ज की वजा लफ्ज के लिए हो गई। आपने तो हमें क्या कहा था? लफ्ज की वजा लफ्ज के लिए नहीं होती बल्कि किसके लिए होती है? मफहूम कुल्ली के लिए होती है। तवज्जो है, आपने क्या जवाब दिया था कि इसम, जैद अमर बकर को नहीं कहते, इसम कहते हैं वो कलीमा जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करे और तीन जमानों में से कोई जमाना उसके उसके अंदर न पाया जाए। तो इसम एक मफहूम कुल्ली के लिए वजा है। लेकिन यहां पर ये जमीरों के जरिए आपका जवाब टूट जाता है क्योंकि जमीरें तो हर हर लफ्ज के लिए अलहदा वजा हैं, हर फर्द के लिए अलहदा वजा है। यहां तो मफहूम कुल्ली है ही नहीं। मफहूम कुल्ली को तो सिर्फ आईना और वास्ता बनाया है, उसके जरिए मैंने जैद को उस आईने में देखा तो जैद भी क्या था? मुफरद भी था, मुजक्कर भी था और माकबल में उसका जिक्र भी हो चुका। तो इसको मफहूम कुल्ली को मैंने मौजू लहू नहीं बनाया बल्कि इस हुआ का मौजू लहू किसको बनाया? जैद को बनाया। तो हुआ वजा हुई किसके लिए? लफ्ज जैद के लिए। किसके लिए? लफ्ज जैद के लिए। तो लफ्ज की वजा लफ्ज के लिए हो गई, कोई मफहूम कुल्ली के लिए यहां वजा नहीं। तो आपने तो यह जवाब दिया था कि इसम, फेल, हर्फ मफहूम कुल्ली के लिए वजा है, लफ्ज के लिए वजा नहीं। लेकिन आपका जवाब टूट जाता है जमीरों के जरिए, अस्माए इशारा के जरिए और अस्माए मौसूला के जरिए, क्योंकि इनमें अगरचे वजा तो आम है लेकिन मौजू लहू खास है, हर हर फर्द के लिए अलहदा वजा। तो हुआ को जब जैद के लिए इस्तेमाल किया तो हम क्या कहेंगे कि यह हुआ का मौजू लहू क्या? जैद। और इसी तरह अमर के लिए इस्तेमाल किया तो हम क्या कहेंगे? हुआ का मौजू लहू क्या? अमर। बकर के लिए इस्तेमाल किया तो हम क्या कहेंगे? हुआ का मौजू लहू क्या है? बकर है। तो यहां कोई मफहूम कुल्ली के लिए वजा नहीं है बल्कि लफ्ज की वजा है लफ्ज के लिए। इश्काल समझ में आ गया। देखिए भाई किताब पर, कहते हैं वला यखफा अलैका, और ये बात आप पर मख्फी नहीं है, पोशीदा नहीं है, कि अन्न हादल हुक्म मनकूजुन, कि ये जो हुक्म है ये टूट जाता है। कौन सा हुक्म? ये जो ऊपर आपने बताया था कि इसम फेल हर्फ वगैरह, ये अल्फाज के लिए वजा नहीं है बल्कि ये मफहूमे कुल्ली के लिए वजा है। आपका ये हुक्म टूट जाता है भी अमसाल जमाइरी, जमीरों जैसी चीजों के जरिए, वो जमीरें अर राजियाती इला अल्फाज इन मखसूसतिन, जो लौटती हैं खास अल्फाज की तरफ, मखसूस अल्फाज की तरफ, मुफरदतिन और मुरक्कबतिन, जो मुफरद होते हैं या मुरक्कब, जो मुफरद होते हैं या मुरक्कब। आपने जुबान से क्या कहा? जैदुन। मैंने क्या कहा? हुआ मुफरदुन। ये लफ्ज क्या है? मुफरद। देखा, हुआ को मैंने किसके लिए वजा किया? जैद के, लफ्ज जैद के लिए। और लफ्ज जैद मुफरद है या मुरक्कब है? मुफरद है। इसी तरह मैं यूं कहता हूं, आपने कहा जैदुन, मैंने कहा हाजा मुफरदुन, ये हाजा के मैंने किसके लिए वजा किया? लफ्ज जैद। और लफ्ज जैद मुफरद है या मुरक्कब है? मुफरद है। या आपने कहा जैदुन, मैंने फौरन कहा अल्लजी कुलतहु मुफरदुन, वो लफ्ज जो आपने कहा है मुफरदुन, वो क्या है? मुफरद है। तो अल्लजी कुलतहु, इससे क्या मुराद है? लफ्ज जैद। क्या मुराद है? लफ्ज जैद मुराद है। तवज्जो है? तो देखो, मालूम हुआ इसमें मौसूल को भी किसके लिए वजा कर दिया? लफ्ज जैद। और लफ्ज जैद मुफरद है। तो यहां देखो, हुआ मुफरदुन, हाजा मुफरदुन, अल्लजी कुलता हो मुफरदुन, जमीर भी आ गई, इसमें इशारा भी आ गया, इसमें मौसूल भी, और इन सब को किसके लिए वजा किया गया है? यहां लफ्ज जैद। और लफ्ज जैद क्या है? मुफरद। और कभी यही चीजें वजा होंगी मुरक्कब के लिए भी, लफ्ज होगा लेकिन होगा मुरक्कब। मसलन आप कहेंगे, आप कहें जैदुन कायमुन, देखा आपने कहा जैदुन कायमुन, मैंने फौरन कहा हुआ मुरक्कबुन, ये क्या है जो जुमला, ये जो लफ्ज आपने बोला, ये क्या है? मुरक्कब है। तो हुआ किसके लिए वजा कर दिया मैंने? जैदुन कायमुन के लिए। या मैं इसमें इशारा ले आता हूं, हाजा मुरक्कबुन, हाजा किसके लिए मैंने वजा कर दिया? जैदुन कायमुन के लिए। या यूं मैं कहता हूं अल्लजी कुलतहु मुरक्कबुन, ये जो आपने कहा है ये मुरक्कब है। मालूम हुआ ये जो जमीरें हैं, अस्माए इशारा हैं और अस्माए मौसूला हैं, जब इनसे किसका इरादा किया जाए? लफ्ज का। तो फिर ये वजह हुई किसके लिए? लफ्ज के लिए वजह हुई। और वो लफ्ज मुफरद भी हो सकता है और मुरक्कब भी हो सकता है। तो देखो, लफ्ज की वजह लफ्ज के लिए हो गई, यहां कोई मफहूम कुल्ली नहीं जिसके लिए इनकी वजह हो। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वला यखफा अलैका, आप पर यह बात पोशीदा नहीं है कि अन्न हादल हुक्म मनकूजुन, के आपका यह हुक्म जो है, यानी ये जो जवाब आपने दिया, मनकूजुन, ये टूट जाता है, भी अमसाल जमाइर राजिअति इला अल्फाजिन मखसूसतिन, उन जमीरों जैसी चीजों से जो लौटती हैं मखसूस अल्फाज की तरफ, मुफरदतिन और मुरक्कबतिन, और वो मखसूस अल्फाज या मुफरद होते हैं या मुरक्कब होते हैं। फइन्नल वज़अ फीहा व इन काना आमन, इसलिए क्योंकि इनके अंदर वज़अ जो है वो अगरचे आम है, वज़अ तो आम है, लाकिन्नल मौज़ू लहू खासुन, लेकिन मौज़ू लहू क्या है? खास है। वो जो आम माना का हमने तसव्वुर किया था उसको हमने मौज़ू लहू नहीं बनाया, उसको सिर्फ वासिता बनाया, उसको वासिता और आईना बनाया अफराद को देखने के लिए और मुलाहिजा करने के लिए। हर हर फर्द के लिए हुआ अलग वजह है, हर हर फर्द के लिए हाजा अलग वजह है, हर हर फर्द के लिए अल्लजी अलग वजह है। तो कहते हैं फइन्नल वज़अ फीहा व इन काना आमन, कि इनके अंदर वजह जो है वो अगरचे आम है, लाकिन्नल मौज़ू लहू खासुन, लेकिन मौज़ू लहू खास है। फलैसा होना का मफहूम कुल्लियुन हुवल मौज़ू लहू फिल हकीकती, तो यहां पर कोई ऐसा मफहूम कुल्ली नहीं है कि वो मौज़ू लहू हो हकीकत में। यहां मौज़ू लहू वो माने कुल्ली है, वो मफहूम कुल्ली है या हर हर फर्द है? हर हर फर्द है। जैद के लिए हुआ अलग वजा, अमर आया तो उसके लिए अलग वजा, बकर आएगा तो उसके लिए अलग वजा। तो यहां मौजू लहू वो मफहूम कुल्ली नहीं है, वो मफहूम कुल्ली उसको तो हमने सिर्फ वास्ता बनाया है। मौजू लहू क्या है? मौजू लहू क्या है? हर हर फर्द है, وضع عام ہے لیکن موضوع لہو خاص ہے، تو یہاں موضوع لہو مفہوم کلی نہیں ہے. آپ نے تو جواب کیا دیا تھا کہ وہ موضوع کیا ہوتا، لفظ کے لیے وضع نہیں ہوتا بلکہ کس کے لیے وضع ہوتا ہے؟ مفہوم کلی کے لیے. لیکن یہاں تو مفہوم کلی کے لیے وضع نہیں ہے، ہوا زید کے لیے الگ وضع ہے، بکر کے لیے الگ وضع، تو ان کا موضوع لہو خاص ہے، عام نہیں ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اشکال اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ صاحب جامی نے اس اعتراض کا جواب ذکر نہیں کیا، صرف اعتراض کر کے نکل گئے کہ یہ آپ نے جو جواب دیا کہ لفظ کی وضع لفظ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ مفہوم کلی کے لیے ہوتی ہے، آپ کا یہ جواب ٹوٹ جاتا ہے ضمیریں اور اس جیسی چیزیں، یعنی اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ کے ذریعے، کیونکہ ان کا موضوع لہو خاص ہوتا ہے، ہر ہر فرد کے لیے وہ علیحدہ وضع ہوتی ہیں. تو اس کا جواب علماء دیتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ دراصل یہاں دو مذہب ہیں، ایک مذہب ہے متقدمین کا اور ایک مذہب ہے متاخرین کا. جو متاخرین ہیں، متاخرین کے نزدیک جو وضع ہے وہ وضع عام ہوتی ہے لیکن موضوع لہو خاص ہوتا ہے، موضوع لہو خاص ہوتا ہے. اور جبکہ متقدمین کے نزدیک وضع بھی عام ہے اور موضوع لہو بھی ان میں عام ہے. متاخرین کے نزدیک یہ ضمیریں، اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ، ان کے اندر وضع بھی عام، متاخرین کے نزدیک ان میں وضع عام ہے اور موضوع لہو خاص، جبکہ متقدمین کے نزدیک وضع بھی عام اور موضوع لہو بھی عام ہے. تفصیل یاد رکھو، متاخرین فرماتے ہیں کہ یہ جو ضمیریں ہیں، اسماء اشارہ ہیں اور اسماء موصولہ، یہ جزیات کے لیے وضع ہیں، البتہ ان جزیات میں مفہوم کلی ملحوظ ہے، یعنی مفہوم کلی کو صرف واسطہ اور آئینہ بنایا ہے لیکن موضوع لہو نہیں بنایا. موضوع لہو کیوں ہیں؟ وہ جزیات ہیں. ہوا کا لفظ زید کے لیے بولیں گے تو ہم یوں کہیں گے آپ نے ہوا کا لفظ زید کے لیے وضع کر دیا. جب آپ ہوا کا لفظ بکر کے لیے بولیں گے تو ہم یوں کہیں گے آپ نے بکر کے لیے ہوا کا لفظ وضع کر دیا، یعنی وہ اس کا موضوع لہو ہے. تو وہ فرماتے ہیں یہ جو ضمیریں ہیں، اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ، ان کے موضوع لہو جزیات ہیں، مفہوم کلی نہیں. وجہ کیا اس کی؟ وہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ جو ضمیریں، اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ ہیں، ان کی وضع جزیات کے لیے ہے، البتہ مفہوم کلی ملحوظ ہے. اس لیے کیونکہ جزیات لا متناہی ہیں، کچھ موجود ہیں کچھ معدوم ہیں، کچھ حاضر ہیں کچھ غائب ہیں. مثلا ہوا، ہاذا یا الذی، اس کو صرف آپ لوگ استعمال کریں گے یا مستقبل میں آنے والے لوگ بھی استعمال کریں گے؟ مستقبل میں آنے والے لوگ بھی استعمال کریں گے. تو معلوم ہوا ہوا، ہاذا اور الذی وغیرہ کے افراد لا متناہی ہیں، کچھ گزر چکے، کچھ موجود ہیں اور کچھ مستقبل میں آئیں گے جن کا ابھی وجود ہی نہیں. تو اس کی جتنی جزیات ہیں وہ لا متناہی ہیں، وہ ایک وقت میں حاضر نہیں ہو سکتی. اور ضابطہ ہے کہ وضع کے وقت موضوع لہو کا موجود ہونا، حاضر ہونا ضروری ہے. وضع کے وقت موضوع لہو کا حاضر اور موجود ہونا ضروری ہے. اور جو جزیات اس زمانے میں ہیں ساری ہوا ہاذا کی، وہ بھی ساری آپ کے سامنے تو موجود نہیں. آپ یہاں بھی ہاذا استعمال کر رہے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں بھی ہوا ہاذا ضمیر وغیرہ استعمال کر رہے ہیں جو عربی بولنے والے ہیں. تو جتنی اس وقت موجود جزیات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے حاضر نہیں، اور جو مستقبل میں ہیں وہ تو ابھی معدوم ہیں، ان کو تو ابھی وجود ہی نہیں. حالانکہ وضع کے اندر ضروری ہے کہ موضوع لہو کیا ہونا چاہیے؟ حاضر ہونا چاہیے، موجود ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں حاضر ہو، آپ کو معلوم ہو، پھر ہی اس کے لیے کسی چیز کو کیا کیا جائے گا، کسی لفظ کو وضع کیا جائے گا. تو جزیات لا متناہی ہیں، وہ ساری بیک وقت موجود بھی نہیں ہو سکتی اور بیک وقت آپ کے ذہن میں حاضر بھی نہیں ہو سکتی. لہذا وہ یوں کرتے ہیں، متاخرین فرماتے ہیں کہ یوں کیا جائے گا کہ وہ جو مفہوم کلی ہے اس کو مرآت اور آئینہ بنایا جائے گا. کس کے لیے؟ اس کی جزیات کے لیے. اس کو کیا بنائیں گے؟ یعنی اس مفہوم کلی کو واسطہ بنائیں گے. اس مفہوم کلی پر جو جو جزی پوری اترے گی اس کے لیے ہم کیا وضع کریں گے؟ ہوا یا ہاذا یا الذی. لہذا اب دیکھو تمام جزیات اس کے اندر آ گئیں کہ جب بھی جہاں بھی کوئی جزی آئے آپ اس کے لیے کیا وضع کرنا چاہتے ہیں, ہوا یا ہاذا, تو آپ اس کو اس آئینے میں دیکھ لیں. اگر وہ اس آئینے میں نظر آئے یعنی اس کی شرائط پر پورا اترے تو اس کے لیے کیا وضع کر دیں گے, ہوا کو وضع کر دیں گے یا ہاذا یا الذی کو وضع کر دیں گے. تو جزیات چونکہ ساری بیک وقت موجود اور حاضر نہیں ہو سکتی, لہذا اس مفہوم کلی کو واسطہ اور آئینہ بنایا جائے گا. وہ آگے جو جزیات معدوم ہیں یا جو جزیات حاضر نہیں, اور جو جزی سامنے آئے گی اس کو اس آئینے میں دیکھ کر اس کے لیے ہوا کا لفظ وضع کرتے چلے جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئے؟ تو حاصل کلام یہ کہ متاخرین کے نزدیک ضمیریں اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ جو ہیں وہ وضع ہیں ایک ایک جزی کے لیے علیحدہ, لیکن واسطہ کس کو بنائیں گے, آئینہ کس کو بنائیں گے, اس مفہوم کلی کو آئینہ بنائیں گے. تو ان کی وضع تو عام ہے لیکن موضوع لہو خاص ہے. جس کے لیے آپ حاذا لائے تو یہ آپ نے گویا اس کے لیے حاذا وضع کر دیا بھائی. جبکہ متقدمین فرماتے ہیں کہ جو ضمیریں ہیں اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ ہیں ان میں وضع بھی عام ہے اور موضوع لہو بھی عام ہے. ان کو وضع کیا گیا ہے مفہوم کلی کے لیے بشرط الاستعمال فی الجزیات. ان کو وضع کس کے لیے کیا گیا ہے؟ مفہوم کلی کے لیے, یعنی ہوا کو وضع کیا گیا ہے ہر مذکر مفرد جس کا ماقبل میں ذکر ہو چکا ہو. ہاذا کو وضع کیا گیا ہے ہر مذکر مفرد جو کیا ہو, مبصر ہو, آنکھوں سے دکھائی دے. البتہ استعمال یہ جزیات میں ہوتے ہیں, وضع ان کی کس کے لیے ہے؟ مفہوم کلی کے لیے. اور استعمال کس میں ہوتے ہیں؟ جزیات میں. بھئی مفہوم کلی کے لیے ان کی وضع کیوں ہے اور جزیات میں استعمال کی شرط کیوں لگائی؟ کہتے ہیں مفہوم کلی کے لیے وضع اس لیے کہ جزیات اس کی لامتناہی ہیں. ہر مفرد مذکر جس کا ذکر ماقبل میں ہو چکا ہو اس کے لیے ہوا استعمال ہو سکتا ہے. تو جزیات محدود ہوئیں یا لامحدود ہوئیں؟ لامحدود ہوئیں. اگلے زمانے میں کچھ چیزیں جن کا بھی وجود ہی نہیں ہے, جو بھی آتی جائیں گی ایسی چیزیں, جو بھی ایسی چیز ہوگی جو مفرد مذکر ہوگی اور ماقبل میں ذکر ہو چکا ہو اس کے لیے آپ ہوا استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کی جزیات لامتناہی ہیں, وہ جزیات ہمارے قابو میں نہیں آ سکتی, ان کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. لہذا ان جزیات کے لیے اس کو وضع نہیں کریں گے بلکہ کس کے لیے کریں گے؟ مفہوم کلی کے لیے ہی اس کو وضع کریں گے, کیونکہ جزیات میں انضباط نہیں. جزیات میں یعنی وہ ہمارے قابو میں نہیں آ سکتی, لیکن مفہوم کلی ہمارے قابو میں ہے. مفہوم کلی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. مفہوم کلی کیا ہوا کا؟ جو بھی چیز کیا ہو, مفرد ہو اور مذکر ہو اور ماقبل میں اس کا ذکر ہو چکا ہو, یہ مفہوم کلی جو ہے یہ تو منضبط ہے, یہ تو ہمارے قابو میں آتا ہے, ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن ایک ایک جزی جو ہے ان سب کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے, وہ انضباط میں ہمارے قابو میں نہیں آ سکتی. لہذا وضع ہر جزی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ وضع بھی کس کے لیے ہے؟ مفہوم کلی کے لیے, وہی اس کا موضوع لہو ہے. اور جزیات میں استعمال کی شرط اس لیے لگائی کہ مفہوم کلی کا وجود جزیات کے ضمن میں ہی ہوتا ہے, الگ اس کا وجود نہیں. حیوان ناطق کا وجود الگ دنیا میں نہیں ہے, وہ اس کے افراد زید عمر بکر خالد ہی کے ضمن میں حیوان ناطق ہو سکتا ہے. تو حاصل کلام کیا متقدمین کیا فرماتے ہیں کہ یہ ضمیریں اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ یہ کس کے لیے وضع ہیں؟ مفہوم کلی کے لیے, وہی ان کا موضوع لہو ہے. البتہ ان کا استعمال کس میں ہوتا ہے؟ جزیات میں ہوتا ہے. تو متاخرین کا مذہب کیا کہ یہ ضمیریں اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ ان میں وضع تو عام ہے لیکن موضوع لہو خاص, ہر فرد کے لیے ہر جزی کے لیے یہ علیحدہ وضع ہیں, وہ ان کا موضوع لہو ہے. اور جبکہ متقدمین کیا فرماتے ہیں کہ ان کا موضوع لہو مفہوم کلی ہی ہے, البتہ یہ استعمال کس میں ہوتی ہیں؟ جزیات میں ہوتی ہیں. یہ تو تفصیل تھی. اب جواب دیا, جواب یہ کہ وہ جو مشترکہ جواب دیا تھا وہ مبنی تھا متقدمین کے مذہب پر. اعتراض کیا صاحب جامی نے کہ یہ آپ کا جواب ٹوٹ جاتا ہے کس کے ذریعے؟ ضمیروں کے ذریعے. آپ نے جواب کیا دیا تھا कि इसम फेल हर्फ जुमला खबर इनको लफ्जों के लिए वजा नहीं किया गया बल्कि किसके लिए वजा किया गया है मफहूम कुल्ली के लिए वजा किया गया है। इस पर शारह जामी ने एतराज किया कि जमीरों वगैरह इनके अंदर तो कोई मफहूम कुल्ली होता ही नहीं है बल्कि वजा किसके लिए होती है जुजियात के लिए एक एक फर्द के लिए इनका मौजू लहू तो खास होता है मौजू लहू आम होता ही नहीं गोया लफ्ज को लफ्ज के लिए ही वजा किया जाता है यहां पर। तो उसका जवाब देते हैं कि वो जो पीछे जवाब गुजरा था उसकी बुनियाद थी मुतकद्दिमीन के मजहब पर मुतकद्दिमीन के नजदीक ये इसम फेल हर्फ वगैरह और ये चीजें वजा हैं किसके लिए मफहूम कुल्ली के लिए। इसी तरह ये जमीरें भी किसके लिए वजा हैं मफहूम कुल्ली के लिए। तो लिहाजा मुतकद्दिमीन के मजहब के एतबार से यहां कोई एतराज नहीं होता। तो जवाब था किसके एतबार से मुतकद्दिमीन के एतबार से और जो इश्काल किया वो किसके एतबार से किया मुताखिरीन के मजहब के एतबार से किया है लिहाजा ये एतराज उस पर वारिद नहीं हो सकता। तफसील समझ में आ गई अच्छी तरह जी। एक मरतबा फिर तर्जमा देख लीजिए कहते हैं वला यख्फा अलैका अन्न हाज़ल हुक्म मनकूज़ुन बि अम्साल ज़माइर राजिअति इला अल्फ़ाज़िन मख़सूसतिन मुफ़रदतिन औ मुरक्कबतिन और ये बात आप पर मख़फ़ी नहीं है कि ये वाला हुक्म जो है टूट जाता है ज़मीरों जैसी चीजों के जरिए वो ज़मीरें जो लौटती हैं मख़सूस अल्फ़ाज़ की तरफ मुफ़रद हों या मुरक्कब फ़इन्नल वज़अ फ़ीहा वइन्कान आमन लाकिन्नल मौज़ू अलहू ख़ासुन इसलिए क्योंकि ये जो ज़मीरें वगैरह हैं इनमें वज़ा अगरचे आम है लेकिन मौज़ू लहू ख़ास है फ़लैसा हुनाका मफ़हूमुन कुल्लीयुन तो यहां कोई ऐसा मफ़हूम कुल्ली नहीं है हुवल मौज़ू लहू फ़िल हक़ीक़ती के वो मौजू लहू हो हकीकत में यहां कोई ऐसा मफ़हूम कुल्ली है ही नहीं। ये मुताख़िरीन के नजदीक बल्कि मौजू लहू यहां खास है मफ़हूम कुल्ली नहीं। तो जवाब क्या हुआ कि वो जो जवाब गुजरा था वो किसके मजहब पर था मुतकद्दिमीन के मजहब पर उनके नजदीक वो मौजू लहू आम है मौजू लहू आम है और तो ये जमीरों में मौजू लहू आम है और इस्तेमाल ये जुजियात में होती हैं। और जो आपने एतराज किया वो किसके मजहब को लेकर किया मुताखिरीन के मजहब को लेकर किया कि इनका मौजू लहू तो खास है तो ये एतराज नहीं हो सकता क्योंकि वो जवाब किस पर मबनी था मुतकद्दिमीन के मजहब पर। बात अच्छी तरह समझ में आ गई चलिए बस बेहादा हुआ अल मराम वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।